आगे सबक देखिए भाई। बाबू सुबूत नसब व मन काला इन तजव्वज तु फुलाना तफहिय तालिकुन फतजव्वजहा फवलदत वलदल सित्तति अशहुरि मिन यौमिन तजव्वजहा फहु अब्नुहु व अलैहिल महर। भाई गुज़श्ता सबक के अंदर इद्दत के मुख्तलिफ अहकाम साहिब हिदाया ने बयान फरमाए थे। मैंने आपको बतलाया कि इद्दत के दौरान औरत के लिए निकाह भी हराम होता है, उसके लिए घर से निकलना भी हराम है और उसके लिए जेबो जीनत इख्तियार करना यह भी हराम है, इल्ला ये कि वो मुतल्लक रजईया हो, उसके लिए जेबो जीनत पसंदीदा है ताकि खावंद रुजू कर ले, और इसी तरह अगर वो मुअत्तदा जो है वो नाबालिगा है तो उस पर भी हिदाद नहीं है। भाई मैंने आपको बतलाया कि हिदाद और इहदाद का माना है सोग मनाना, इजहार गम करना, तो लिहाजा ये जो नाबालिगा है इस पर भी हिदाद नहीं है। भाई तो हासिल कलाम ये कि इद्दत के अंदर तीन पाबंदियां होती हैं औरत पर। एक तो पाबंदी होती है तजयुन की, एक पाबंदी होती है तजव्वुज की और एक पाबंदी होती है खुरूज की। तो हमारे नजदीक वो औरत जिसके खावंद का इंतकाल हो जाए उस पर भी हिदाद है और जो मुअत्तदा मबतूता है उस पर भी हिदाद है। भाई इसलिए क्योंकि ये जो सोग मनाया जाता है ये नेमत निकाह के फौत हो जाने की वजह से इजहार गम किया जाता है। भाई और हिदाद यह है कि औरत खुशबू और जीनत वाली चीजें तर्क कर देगी, वो सुरमा नहीं लगा सकती, वो तेल नहीं लगा सकती, चाहे खुशबूदार हो चाहे गैर खुशबूदार। हां अगर कोई उजर हो, कोई दर्द तकलीफ वगैरह है, बीमारी है, तो उसके अंदर दवा के तौर पर वो ये चीजें इस्तेमाल कर सकती है। भाई अगर औरत जो है वो काफिरा है तो उस पर हिदाद नहीं है। मसलन एक शख्स मुसलमान था और उसने यहूदिया या ईसाई औरत से निकाह किया हुआ था और फिर उस मुसलमान का इंतकाल हुआ तो इस यहूदिया या ईसाई बीवी पर हिदाद नहीं है क्योंकि ये अशरई अहकाम के मुकल्लफ नहीं है। भाई और इसी तरह नाबालिगा पर भी हिदाद नहीं है जबकि बांदी पर हिदाद है। भाई और उम्मे वलद जो है उस पर भी हिदाद नहीं और निकाह फासिद वाली पर भी हिदाद नहीं है, इसलिए क्योंकि हिदाद जो है वो नेमत निकाह के फौत होने पर इजहार अफसोस किया जाता है और उम्मे वलद का तो कोई निकाह फौत नहीं हुआ। भाई और इसी तरह निकाह फासिद के अंदर भी निकाह नहीं था। भाई और फिर ये मुअत्तदा जो है क्या इसको पैगाम निकाह भेज सकते हैं या नहीं, तो साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि इनको इशारों किनायों के अंदर पैगाम निकाह दिया जा सकता है। मसलन वो शख्स जिक्र कर देता है कि मेरा भी निकाह करने का इरादा है या यूं कह देता है कि मेरी तुम में रगबत है, तो किसी तरह अपने रगबत का या अपनी ख्वाहिश का बस इजहार कर दे, अलबत्ता उससे निकाह का पक्का वादा न ले। भाई और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया आपको कि जो मुतल्लक रजईया है या मुतल्लक मबतूता है उसके लिए दिन को भी घर से निकलना जायज नहीं और रात को निकलना भी जायज नहीं, जबकि वो औरत जिसके खावंद का इंतकाल हो चुका है अगर उसके लिए कोई कमाने वाला नहीं, उसके लिए नफके का इंतजाम नहीं है, तो फिर इस सूरत में उसके लिए दिन को निकलना जायज है और इसी तरह रात के इब्तदाई हिस्से में, इसलिए क्योंकि वो रोजी की तलाश में दिन को निकलेगी तो बाज औकात रात भी आ जाती है, तो रात के इब्तदाई हिस्से में भी उसको इजाजत होगी, अलबत्ता रात उसी घर में इसको गुजारना पड़ेगी। भाई तो चूंकि मुतल्लक रजईया और मबतूता जो है उनका तो नफका खावंद की तरफ से मिल रहा है लिहाजा उनको दिन को भी निकलने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन ये मुतवफा अनहा ज़ौजुहा जो है इसको तो नफका नहीं मिल रहा। भाई खावंद के माल में से इसको नफका नहीं मिल रहा तो इसको रोजी के लिए बाहर निकलने की हाजत पेश आ सकती है। और फिर साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि मुअत्तदा उसी घर के अंदर इद्दत गुजारेगी। भाई जिस घर के अंदर इसकी रिहाइश थी और इसी दौरान खावन ने तलाक दी है या खावन का इंतकाल हुआ है, حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ معتدہ اپنے والدین کے گھر گئی ہوئی تھی اور وہاں اس کو خبر ملی کہ اس کے خاوند نے اس کو طلاق دے دی ہے تو اب یہ وہیں پر نہ رہے، وہاں پر رہنا اس کے لیے جائز نہیں ہے بھائی، یہ واپس آئے گی اور اپنے اسی گھر کے اندر اپنی عدت پوری کرے گی۔ اب اگر مثلا خاوند کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ جو عورت جس گھر میں رہ رہی ہے اس گھر کے اندر اس کا حصہ جو آیا وراثت کے اندر وہ اس کے لیے ناکافی ہے، وہ جگہ اس کے رہنے کے لیے ناکافی ہے بھائی۔ یا اسی طرح مثلا وہ خاوند کا گھر ایسی جگہ ہے کہ اس کو خوف ہے کہ یہاں کوئی اس کا سامان چوری کر لے گا یا کوئی اس کا سامان چھین لے گا، یا اسی طرح وہ مکان کی حالت بڑی خراب ہے، اس کے گرنے کا خطرہ ہے، یا وہ گھر کرائے پر ہے اور عورت کے پاس پیسے نہیں کہ وہ ادائیگی کر سکے، تو یہ تمام عذر ہیں اور ان صورتوں میں عورت وہاں سے منتقل ہو سکتی ہے۔ البتہ جہاں ایک دفعہ منتقل ہو جائے پھر وہیں پر اپنی عدت گزارے، وہاں سے پھر دوبارہ منتقل نہ ہو بئی۔ اور جبکہ اس کے مقابلے میں اگر جدائی جو واقع ہوئی ہے طلاق بائن یا تین طلاقوں کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس صورت کے اندر بیوی اور خاوند کے درمیان پردے کا ہونا ضروری ہے بھائی۔ خاوند کے گھر میں اگر اتنی جگہ ہے جہاں وہ پردے کے ساتھ رہ سکتی ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر ایک ہی کمرہ ہے تو اس صورت میں بھی درمیان میں پردہ ہونا چاہیے، ورنہ تو اجنبیہ کے ساتھ خلوت لازم آئے گی کیونکہ خاوند اسے طلاق بائن دے چکا ہے یا تین طلاقیں دے چکا ہے۔ تو اگر پردہ یا آڑ یا رکاوٹ نہ ہوگی، ایک ہی کمرے میں ہیں، تو یہ تو اجنبیہ کے ساتھ خلوت لازم آئے گی اور یہ تو جائز نہیں ہے بھائی۔ تو لہذا پردہ آڑ یا رکاوٹ ہونی چاہیے بھائی۔ اور اگر یہ کسی اور عورت کو بلوا لیتے ہیں جو اس عورت کے ساتھ رہتی ہے اور وہ خاوند اور بیوی کے درمیان حائل ہے تو یہ صورت بھی اچھی ہے بھائی۔ البتہ اگر اس کا خاوند فاسق ہے، دینی چیزوں کا خیال ہی نہیں رکھتا، تو اس عورت کو خوف ہے کہ اگرچہ میں اس پر حرام ہو چکی ہوں لیکن یہ خاوند تو حرام اور حلال کا خیال نہیں کرتا، تو اس صورت میں بھی اس کو وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اور صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ ان صورتوں میں بہتر یہ ہے کہ خاوند وہاں سے منتقل ہو جائے، کیونکہ عورت کے لیے تو وہیں عدت گزارنا واجب ہے، تو خاوند کے لیے تو وہاں رہنا لازمی نہیں ہے، تو وہ دوران عدت اپنے لیے الگ انتظام کر لے، یہ بہتر ہے بھائی۔ پھر اس کے بعد صاحب ہدایہ نے آخر میں مسئلہ ذکر فرمایا تھا کہ اگر ایک عورت اپنے خاوند کے ساتھ سفر پر نکلی مکہ کی طرف اور راستے کے اندر خاوند کا انتقال ہوا یا اس نے طلاق بائن دے دی، تو اگر یہ جنگل کے اندر ہیں تو جو اس کے اصل وطن ہے عورت کا، اصل جو شہر ہے، اس کی طرف مسافت کو دیکھیں گے، اگر وہ سفر سے کم ہے تو عورت واپس آ جائے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے واپس آ سکتی ہے، یہ تو معتدہ ہے اور معتدہ کو تو نکلنے سے منع کیا گیا ہے، اس پر تو خروج کی پابندی ہے۔ تو اس کا جواب دیا تھا صاحب ہدایہ نے کہ یہ ابتدائے خروج نہیں ہے، یہ خروج اول پر ہی اس کی بنیاد ہے، یعنی خروج تو پہلے ہی کا ہو چکا ہے بھائی، خروج تو پہلے ہی کا ہو چکا ہے، تو یہ واپسی کی اسی پر بنیاد ہے، یہ کوئی ابتدائی خروج نہیں ہے کہ اس کو حرام قرار دیا جائے۔ اور نیز اس لیے کیونکہ اس جگہ پر رہنا اس عورت کے لیے زیادہ خوف والا ہے، کیونکہ وہ جنگل ہے بھائی، تو اس میں خوف اس کے لیے زیادہ ہے، لہذا مدت سفر سے کم ہے اس کا اپنا شہر تو واپس آ جائے گی۔ اور اگر اس کا اپنا شہر تین دن کی مسافت پر ہے اور اسی طرح جس طرف جا رہی ہے وہ جگہ بھی تین دن کی مسافت پر ہے، تو پھر اس عورت کو اختیار ہے چاہے واپس آ جائے اور چاہے اس مقصود کی طرف چلی جائے بھائی، لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ واپس آ جائے تاکہ اسی گھر میں عدت گزار لے جہاں یہ رہتی تھی بھائی۔ اور اس کے مقابلے میں اگر سفر کے دوران خاوند کا انتقال ہوا ہے اور یہ اس نے طلاق دی ہے اور اس وقت یہ کسی شہر کے اندر تھے، تو پھر اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ اب عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ واپس اپنے شہر چلی جائے یا اپنی منزل کی طرف چلی جائے، بلکہ اس کو یہیں پر عدت گزارنا پڑے گی، چاہے اس کے ساتھ محرم ہی کیوں نہ موجود ہو، پھر بھی اس کو یہیں پر عدت گزارنا پڑے گی۔ اور پھر جب عدت گزار لے پھر اس کے بعد اب یہ سفر پر نکلنا چاہتی ہے تو اب محرم کے ساتھ جا سکتی ہے، کیونکہ تین دن کی مسافت ہے اور اس میں محرم کا ہونا ضروری ہے بھائی۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں कि अगर खावंद ने सफर के दौरान किसी शहर के अंदर तलाक दी है या उसका इंतकाल हुआ है और औरत के साथ उसका महरम भी मौजूद है तो इस सूरत में औरत के लिए उस शहर से निकलना जायज है, इसलिए क्योंकि मुमानियात जो थी वो महरम ना होने की वजह से थी और अब तो महरम मौजूद है लिहाजा इस पर मुमानात नहीं है, ये अपने शहर की तरफ भी जा सकती है और मंजिल की तरफ भी भाई, और मंजिल की तरफ भी, जबकि दोनों तरफ मसाफत बराबर हो गई। तो साहिबैन फरमाते हैं कि अगर इस औरत के साथ महरम मौजूद है तो इद्दत से पहले भी इसका उस शहर से निकलना जायज है। वजह यह कि वो फरमाते हैं कि नफ्से खुरूश तो इस औरत के लिए जायज है क्योंकि यहां पर परदेश की तकलीफ भी है और अकेले होने की वहशत भी है, तो ये उजर है भाई। और सिर्फ सफर हराम था उस सूरत में जबकि महरम ना हो, लेकिन यहां तो महरम भी मौजूद है लिहाजा ये औरत इद्दत से पहले भी वहां से निकल सकती है। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि इद्दत भी निकलने से रोकने वाली है और महरम का न होना यह भी निकलने से रोकने वाला है, लेकिन इद्दत ज्यादा रोकने वाली है, इद्दत ज्यादा मानेअ मिनल खुरूज है। वजह इसकी यह कि महरम ना हो तो औरत सफर की मिकदार तक के लिए नहीं जा सकती, लेकिन सफर यानी तीन दिन के मसाफत से अगर कम जगह है तो औरत बगैर महरम के भी जा सकती है, जबकि इद्दत के अंदर तो सफर से कम मसाफत हो फिर भी औरत के लिए निकलना जायज नहीं। मालूम हुआ कि इद्दत जो है वो ज्यादा मानेअ मिनल खुरूज है आदम महरम के मुकाबले में भाई। तो जब वो शहर ऐसी जगह है कि अपना शहर भी वहां से सफर की मुद्दत पर है और मंजिल भी सफर की मुद्दत पर है, तो फिर इस सूरत में यहां पर गैर महरम मानेअ बनेगा सफर से, तो इद्दत बतरीके औला मानेअ बनेगी भाई, तो लिहाजा ये वहीं पर इद्दत गुजारेगी भाई। अब आइए आज के सबक पर। बाबू सुबूत इन नसबी व मन काल इन तजव्वज तु फुलानत फहिय तालिकुन फतजव्वजहा फवलदत वलदल लिसित्तति अशहरि मिन यौमिन तजव्वजहा फहुव इब्नुहु वअलैहिल महरु। बाबू सुबूत इन नसब, ये बाब है नसब के सुबूत के बारे में। कहते हैं वमन काला, जी आपको मैंने जाब्ता बतलाया था कि शरीयत सुबूत नसब के अंदर बे इंतहा एहतियात से काम लेती है, पूरी कोशिश की जाती है कि किसी ना किसी तरह बच्चे का नसब साबित हो जाए, क्योंकि अगर नसब साबित नहीं होगा तो बच्चा जाया हो जाएगा, बच्चा हलाक हो जाएगा, और अगर हलाक ना भी हुआ तो बड़ा होगा तो माशरे में उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा भाई, तो लिहाजा किसी न किसी तरह बच्चे के लिए नसब साबित कर दिया जाए। अब सूरत मसला बयान कर रहे हैं कि मसलन एक शख्स है, उसने एक अजनबिया के बारे में कहा कि अगर फुलानी औरत से मैंने निकाह किया तो उसे तलाक है, तो याद रखो ये शख्स जैसे ही उस औरत से निकाह करेगा फौरन अगले लम्हे के अंदर ही तलाक वाके हो जाएगी, क्योंकि इसने तलाक को मुअल्लक किया है उस औरत के निकाह के साथ, तो जैसे ही शर्त पाई जाएगी फौरन जजा वाके हो जाएगी। अब सूरत मसला यह कि एक शख्स ने यह कसम उठा ली कि मैंने अगर फुलानी औरत से निकाह किया तो उसे तलाक है, और फिर इसने उस औरत से निकाह कर लिया जी। तो जैसे ही निकाह किया तलाक वाके हो गई, और फिर उसके बाद ठीक छह माह के बाद इस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया, न छह माह से कम न छह माह से ज्यादा, तो ठीक छह माह में उसने बच्चे को जन्म दिया, और आप जानते हैं कि हमल की कम से कम मुद्दत छह माह है भाई, छह माह के अंदर औरत एक सही सलामत बच्चे को जन्म दे सकती है, और हमल की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत जो है वो दो साल है। हमल जो है वो अपने मां के हमल जो है मां के पेट में दो साल से थोड़ी सी देर भी ज्यादा नहीं रह सकता भाई, तो ज्यादा से ज्यादा मुद्दत हमल दो साल है। तो अब इस औरत ने बच्चे को जन्म दिया ठीक छह महीने पर, ना कम ना ज्यादा, तो इस सूरत में याद रखो फुकहा फरमाते हैं कि ये इसी शख्स का बेटा शुमार होगा और इस शख्स पर पूरा महर वाजिब होगा, इसको पूरा महर देना पड़ेगा। तो इस पर सवाल पैदा होता है कि भाई इसने तो तलाक को मुअल्लक किया था निकाह के साथ, तो निकाह होते ही उस जिस लम्हे में निकाह हुआ उसी लम्हे में तलाक भी हो गई, तो यहां तो वक्त ही नहीं है सोहबत करने का, तो बच्चे का नसब कैसे साबित हो जाएगा? तो फुकहा फरमाते हैं कि इसका तसव्वुर किया जा सकता है। मसलन इसकी सूरत यह है कि इस शख्स ने और इस औरत ने कि दो आदमियों को अपना वकील बना दिया कि तुम दोनों हमारा निकाह करवा देना फुला रात को। अब उसी रात निकाह करवाने वालों ने इनका निकाह करवा दिया और उसी रात के अंदर इस शख्स ने इस औरत के साथ सोहबत भी कर ली। अब पता नहीं निकाह पहले हुआ है या सोहबत पहले हुई है, तो लिहाजा जब इनमें तकदीम और ताखीर का इलम नहीं हो सकता तो इनको मुकारनत पर महमूल किया जाएगा, यानी यूं समझा जाएगा तो जिस रात उन दोनों वकीलों ने इनका निकाह करवाया उसी रात इस शख्स ने इस औरत के साथ सोहबत कर ली, तो सोहबत कर ली तो उसी वक्त हमल ठहर गया भाई। अब यहां पर तकदीम और ताखीर का इलम नहीं है कि वकीलों ने निकाह पहले करवाया है या इसने सोहबत पहले की है, तो लिहाजा जब दोनों में से किसी की तकदीम और ताखीर का पता नहीं चल सकता तो दोनों को मुकारनत पर महमूल किया जाएगा। यानी ऐन जिस वक्त वकील निकाह करवा रहे थे ऐन उस वक्त उस वक्त हमल ठहर रहा था, यानी उस शख्स को इंजाल हो रहा था। ऐन जिस वक्त वकील निकाह करवा रहे थे तो ऐन उसी लम्हे के अंदर इंजाल हो रहा था, यानी हमल ठहर रहा था। तो लिहाजा मालूम हुआ ये इसी खावंद की औलाद है भाई। तो देखो सूरत मुमकिन हो गई, सूरत मुमकिन हो गई कि जिस लम्हे में निकाह उसी लम्हे में हमल ठहरा है, तो ये इसी शख्स से हमल साबित होगा भाई। तो आप कहेंगे कि ये तो इंतहाई नादिर सूरत है कि इस तरह हो जाए, तो जवाब ये कि बेशक नादिर सूरत है लेकिन इम्कान तो है, इहतमाल तो है। तो बच्चे का नसब साबित करने के लिए चाहे नादिर सूरत का ही तसव्वुर मुमकिन हो उस पर उसको महमूल कर लिया जाएगा। और आप ये एतराज भी ना करें कि ये तो उस शख्स पर बिला वजह ही इस बच्चे का नसब साबित कर दिया गया। नहीं भाई, उस शख्स के पास भी पूरा इख्तियार है। जब उसको पता है ऐसा नहीं हुआ, जो हमने सूरत जिक्र की उसको पता है ऐसा नहीं हुआ, मैंने तो इस औरत से सोहबत ही नहीं की, तो फिर इस सूरत के अंदर उसके पास नफी मौजूद है, वो बच्चे की नफी कर दे, लियान कर ले, और लियान कर लेगा तो बच्चे के नसब की नफी हो जाएगी। लेकिन अगर खावंद लियान नहीं कर रहा, नफी नहीं कर रहा, और उससे हमल का इहतमाल भी है, एक सूरत मुमकिन भी है, तो बिला वजह फिर नसब की नफी नहीं की जाएगी भाई। जब वो खुद नफी नहीं कर रहा तो शरीयत भी नसब की नफी नहीं करेगी भाई। देखिए भाई, कहते हैं वमन काला, और जिस शख्स ने कहा इन तजवज तो फुलाना था, अगर मैंने फुलानी औरत से निकाह किया, फहिया तालिकुन तो उसको तलाक है। भाई मेरी किताब में फुलाना तन लिखा है, ता पर तनवीन है भाई। मैंने आपको पहले भी बतलाया कि ये फुलाना था ये गैर मुनसरिफ है भाई, लेकिन ये राइज गलती है, तमाम तलबा इसको फुलाना तन पढ़ते हैं तनवीन के साथ, हालांकि ये गैर मुनसरिफ है। और मैंने हवाला भी जिक्र किया था कि अल्लामा रजी, जिन्होंने काफिया की अजीम शरा लिखी है, जहां काफिया के अंदर साहिब काफिया मारिफा की अकसाम बयान फरमाते हैं, तो अल्लामा रजी उस मकाम पर आलम की बहस के अंदर ये जिक्र फरमाते हैं कि ये फुलानुन और फुलानतु ये जो हैं ये अलम से किनाया होते हैं, इनके जरिए किसी अलम का इरादा किया जाता है, तो ये अलम के दर्जे में है। तो इस फुलाना के अंदर दो सबब आ गए, एक तो ये इसके अंदर अलमियत है क्योंकि अलम के दर्जे में है, और दूसरी ताय तानीस है, तो दो सबब पाए गए, तो ये गैर मुनसरिफ है। और नीज वहां वो ये भी जिक्र फरमाते हैं कि फुलानुन और फुलाना था इन पर अलिफ्लाम का दाखिल करना भी जायज नहीं, क्योंकि ये खुद ही मारिफा हैं, जब मारिफा हैं तो अब अलिफ्लाम के जरिए इनको मारिफा बनाने की कोई हाजत नहीं है भाई। तो कहते हैं वमन काला, और जिस शख्स ने कहा इन तजवज तो फुलाना था फहिया तालिक, उनके अगर मैंने फुलानी औरत से निकाह किया तो उसको तलाक है, फतजवा जहा तो फिर इस शख्स ने उस औरत से निकाह कर लिया, फवलदत वलदल लिसितति अशहुरिन मिन यौमिन तजवा जहा तो उस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया, लिसितति अशहुरिन 6 माह पर, छह माह के वक्त पर, पूरे छह माह यानी ना कम है ना ज्यादा है, मिन यौमिन तज़व्वजहा, उस दिन से जिस दिन इसका निकाह हुआ था, निकाह और बच्चे के दरमियान पूरे छह माह की मुद्दत है भाई। तो कहते हैं फहुआ बनूहू, तो ये बच्चा इसका बेटा होगा, वालैहिल महरु, और खावन पर पूरा महर लाजिम होगा। अम्मन नसबु फली अन्नहा फिराशुहू, कहते हैं भाई नसब तो इसलिए साबित होगा, फली अन्नहा फिराशुहू, क्योंकि ये औरत इसकी फिराश है। ये औरत क्या है? इसकी फिराश है। और हदीस में आया है अलवलदु लिल फिराश अयलि साहिबिल फिराशी, के बच्चा साहिबे फिराश का होता है, तो नसब साबित होगा। लिअन्नहा लम्मा जाअत बिल वलदी, इसलिए क्योंकि जब वो औरत बच्चे को ले आई, लिसित्तति अशहुरिन मिन वक्तिन निकाही, निकाह के वक्त से लेकर छह माह के वक्त में, फकद जाअत बिही लिअकल्ल मिनहा मिन वक्ति तलाकी, तो तहकीक वो बच्चे को ले आई है, लिअकल्ल मिनहा, उस छह माह से कम के अंदर, मिन वक्ति तलाकी, वक्त तलाक से। भाई देखिए, जब निकाह से छह माह गुजरे हैं तो तलाक से छह माह से कम गुजरे हैं। भाई आपके जहन में आएगा, भाई जिस लम्हे के अंदर निकाह हुआ था उससे अगले लम्हे में ही तो तलाक हो गई थी, तो जब निकाह से छह महीने हैं तो तलाक से भी छह महीने। तो जवाब नहीं भाई, यूं कहो, निकाह से जब छह माह हैं तो तलाक से छह माह से कम है, चाहे मामूली सा ही कम क्यों ना हो, लेकिन कम तो है भाई। बस यह एक इहतमाल जिक्र किया जा रहा है, सूरत समझ में आ रही है? तो बस निकाह से जब छह माह है तो यूं समझो तलाक से छह माह से भी कम है भाई, और इतनी मुद्दत के अंदर तो नया हमल नहीं ठहर सकता। मालूम हुआ यह बच्चा जिना से नहीं हुआ, यह इसी शख्स का बच्चा है भाई, क्योंकि तलाक से तो छह माह से भी कम है भाई। फिर तर्जमा देखिए, कहते हैं लिअन्नहा लम्मा जाअत बिल वलदी लिसित्तति अशहुरिन मिन वक्तिन निकाही, इसलिए क्योंकि औरत जब बच्चे को ले आई वक्ते निकाह से छह माह की मुद्दत में, फकत जाअत बिही लिअकल्ल मिनहा, तो तहकीक ये बच्चे को ले आई लिअकल्ल मिनहा, उस छह माह से कम के अंदर, मिन वक्ति तलाकी, वक्ते तलाक से, तलाक के वक्त से तो छह माह से कम के अंदर बच्चे को ले आई, अगरचे थोड़ा सा फर्क है, मामूली सा, लेकिन फर्क तो है बहरहाल, तो उसको यहां हम एतबार करेंगे। फकान अलुक कबलहु फी हालत निकाही, उलूक कहते हैं हमल का ठहरना, फकान अलुक कबलहु, तो हमल का ठहरना जो है वो कबलहु, वो इस तलाक से पहले था, फी हालत निकाही, निकाह की हालत में, व तसव्वुर साबितुन, और इसका तसव्वुर साबित है, यानी ऐसा मुमकिन है भाई। किस तरह? भी अन तज़व्वजहा, बई सूरत के उस शख्स ने उस औरत से निकाह किया, वह हुआ युखालितुहा, इस हाल में कि वो खावंद उसके साथ मिला हुआ था। खालत युखालितु का क्या माना है? मिला हुआ होना, मुराद है यहां सोहबत, खावंद उसके साथ सोहबत में मशगूल था। फवाफकल इंजाल उन निकाहा, तो इंजाल जो है वो मुआफिक हो गया निकाह के, यानी ऐन जिस वक्त निकाह हुआ उसी वक्त इंजाल भी हुआ, यानी उसी वक्त हमल भी ठहर गया, जब इंजाल हुआ तो हमल भी ठहर, तो फवा फकल इंजाल उन निकाहा, तो इंजाल जो था वो मुआफिक हो गया निकाह के। वन नसब युहता तुफी इस बात ही, और नसब जो है वो एहतियात की जाती है उसके इस बात में, चाहे नादिर सूरत ही का तसव्वुर क्यों ना करना पड़े। और मैंने बताया खावंद इनकार करना चाहे तो इनकार कर सकता है, वो लिहान करके नफी कर सकता है बच्चे के नसब की। तो कहते हैं वन नसब युहतातु फी इस बात ही, और नसब जो है इसके इस बात में एहतियात की जाती है। वह अम्मल महरु फली अन्नहु, अच्छा भाई खावंद पर महर क्यों आएगा? कहते हैं इसलिए क्योंकि जब बच्चे का नसब उससे साबित हो रहा है, और नसब तो तभी साबित हो सकता है जब खावंद ने वती की हो, तो लिहाजा खावंद को हुक्मन वती करने वाला करार दिया जाएगा, यानी खावंद पर हुक्म लगा दिया जाएगा कि इसने वती की है, क्योंकि नसब तो बगैर वती के साबित नहीं हो सकता, तो जब नसब साबित हो रहा है तो खावंद की वती भी साबित हो जाएगी, और जब वती साबित हो गई तो फिर इस सूरत के अंदर महर पूरा देना पड़ता है। तो कहते हैं वह अम्मल महर और बाकी महर जो है फली अन्नहुला मासा बतन नसब उमीन हो, इसलिए क्योंकि जब उस खावन से नसब साबित हो गया जो इला वाती अन हुक्मन तो इसको सोहबत करने वाला करार दिया जाएगा हुक्मन बाएतबार हुक्म के, यानी यह हुक्म लगा दिया जाएगा उस पर कि इसने वती की है। फता अक्कदल महरूबी ही, तो इस वती की वजह से महर पक्का हो गया तो अब वो महर देना पड़ेगा। सूरत समझ में आ गई। आगे देखिए काल वयसबुतु नसबु वलदिल मुतल्लकति रजईयति इदा जाअत बिही लिसनतैनि औ अक्सरा मा लम तुकिर बिन्क़िज़ाइ इद्दतिहा। सूरत मसला यह, खावंद ने बीवी को तलाक रजई दी है और इस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया, चाहे तलाक में और बच्चे की पैदाइश में दो साल से कम की मुद्दत हो, चाहे तलाक में और बच्चे की पैदाइश में पूरे दो साल की मुद्दत हो, और चाहे इस दो साल से भी ज्यादा की मुद्दत हो जी। तो तलाक और बच्चे की पैदाइश के अंदर चाहे दो साल से कम की मुद्दत हो, चाहे दो साल की मुद्दत हो, चाहे दो साल से ज्यादा की मुद्दत हो, तो ये इहमल इसी खावन से साबित हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है दरमियान में औरत ने इद्दत के गुजरने का इकरार न किया हो। अगर इसने दरमियान में इकरार कर लिया कि मेरी तो इद्दत गुजर गई, मेरी तो इद्दत पूरी हो गई, इद्दत गुजर गई, और उस इकरार के छह माह बाद ये बच्चे को जन्म दे रही है, तो भाई इस इकरार के बाद इतनी मुद्दत है जिसमें हमल ठहर सकता है, तो मालूम हुआ ये उसी खावन से नहीं है बल्कि ये जिना से है। बात समझ में आ गई। फिर सुन ले सूरत, खावन ने बीवी को तलाक रजई दी है और उसने एक फिर बच्चे को जन्म दिया, और तलाक और बच्चे की पैदाइश में चाहे दो साल से कम की मुद्दत है, चाहे दो साल है, चाहे दो साल से ज्यादा, दो साल से कम चाहे छह महीने है, चाहे आठ महीने है, चाहे डेढ़ साल है, चाहे दो साल से एक दिन कम है, ये सब इसके अंदर आ गए। तो तलाक में और बच्चे की पैदाइश में चाहे दो साल से कम मुद्दत है, चाहे दो साल है, चाहे दो साल से ज्यादा, तमाम सूरतों में नसब साबित हो जाएगा बशर्ते कि औरत ने अपनी इद्दत के गुजरने का इकरार न किया हो। भाई दो साल से कम हो फिर तो बात वाजे है कि हमल की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत दो साल है, और तलाक के बाद अभी दो साल पूरे नहीं हुए तो मालूम हुआ यह हमल तलाक से पहले ठहरा था। लेकिन अगर तलाक को पूरे दो साल हो चुके हैं या दो साल से ज्यादा, फिर कैसे नसब साबित होगा? कहते हैं भाई हम तलाक रजई की बात कर रहे हैं, और तलाक रजई के अंदर इद्दत के अंदर भी खावन के लिए सोहबत जायज होती है। हां अलबत्ता खावन सोहबत करेगा तो रुजू हो जाएगा, तवज्जो है। तो लिहाजा यहां हो सकता है कि इस औरत की इद्दत लंबी हो गई हो और खावन ने इद्दत के दौरान सोहबत कर ली हो और फिर उससे हमल ठहर गया और औरत ने बच्चे को जन्म दिया, तो लिहाजा जिस कदर मुमकिन हो सका इस बच्चे का नसब साबित किया जाएगा। इल्ला ये कि औरत इकरार कर चुकी है कि मेरी इद्दत गुजर गई, फिर नसब के साबित करने की सूरत नहीं होगी भाई। और हां यह भी आप ना कहें कि खावन ने तलाक रजई दी है, तीन साल बाद औरत ने बच्चे को जन्म दिया और आप कह रहे हैं जी खावन से नसब साबित हो जाएगा जी। तो भाई मैंने बतला दिया खावन नफी कर सकता है भाई, वो लियान कर दे, नफी कर दे भाई। काला तो फरमाते हैं वयसबुतु नसबु वलदिल मुतल्लकतिर रजईयति, के मुतल्लक रजईया के बच्चे का नसब साबित हो जाएगा। इदा जाअत बिही लिसनतैनी, जब वो ले आए बच्चे को दो साल के वक्त पर, और अक्सरा या इससे ज्यादा, दो साल से कम वाली सूरत आगे आएगी, ये दो साल या दो साल से ज्यादा की बात कर रहे हैं। इदा जाअत बिही लिसनतैनी, जब वो बच्चे को ले आई दो साल में, और अक्सरा या दो साल से ज्यादा में, मालम तो किर्र बिन क़िज़ाइ इद्दतिहा, जब तक वो औरत इकरार न कर ले अपनी इद्दत के गुजरने का, लिहतमाल उलूक फी हालत इद्दती, इसलिए क्योंकि हमल ठहरने का इहतमाल है इद्दत की हालत में, लिजवाज़ी अन्नहा तकून मुमतद्दतत तोहरी, इसलिए क्योंकि मुमकिन है कि औरत मुमतद्दतु तोहर हो, यानी इसका तोहर लंबा हो गया हो। मैंने बताया था बाज़ औक़ात तोहर लंबा हो जाता है, कई कई महीने तक औरत को हैज ही नहीं आता, तो हो सकता है मसलन तीन साल बाद औरत ने बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन इसको हम महमूल करेंगे कि इस औरत का तोहर लंबा हो गया था, तो तोहर लंबा हो गया, जब तोहर लंबा हुआ तो इद्दत लंबी हो गई, और जब इद्दत लंबी है तो उसके दौरान तो खावन किसी भी वक्त वती कर सकता है क्योंकि ये मुतल्लक रजईया है भाई। وہ ان جاعت بھی لی اقل من سنتین، اور اگر عورت بچے کو لے آئی دو سال سے کم کے اندر، بھائی دو سال یا دو سال سے زیادہ کے اندر بچے کو لائی ہے، پہلی صورت جو گزری، اس صورت میں معلوم ہوا یہ حمل طلاق کے بعد ٹھہرا ہے، کیونکہ طلاق میں اور بچے کی پیدائش میں دو سال یا دو سال سے زیادہ کی مدت ہے، تو معلوم ہوا یہ حمل طلاق کے بعد ٹھہرا ہے، طلاق سے پہلے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر طلاق سے پہلے ہو یہ تو دو سال سے زیادہ حمل کی مدت ہو جائے گی، لہذا اس صورت میں پھر ہم کہیں گے چاہے طلاق اور بچے کی پیدائش میں دو سال ہو یا دو سال سے زیادہ، ہم کہیں گے یہ طلاق کے بعد خاوند نے صحبت کی ہے اور اس کو رجوع شمار کیا جائے گا کہ خاوند کیا کر چکا ہے، اس عورت سے رجوع کر چکا ہے. لیکن اگر دو سال سے کم کے اندر عورت بچے کو لے آئی، طلاق میں اور بچے کی پیدائش میں دو سال سے کم مدت ہے، تو یہاں پر تو دونوں احتمال ہیں، ہو سکتا ہے خاوند نے طلاق سے پہلے صحبت کی ہو اور ہو سکتا ہے خاوند نے طلاق کے بعد صحبت کی ہو، لیکن اس کو محمول کیا جائے گا طلاق سے پہلے والی صورت پر. وجہ یہ کہ اس کو اگر طلاق کے بعد والی صورت پر محمول کریں تو پھر تو یہ رجوع ہو جائے گا، لیکن طلاق کے بعد صحبت کا ہونا تو پھر بھی یقینی نہیں ہے، احتمال ہے، ہو سکتا ہے طلاق کے بعد صحبت کی ہو اور اس کی وجہ سے حمل ٹھہرا ہو، اور طلاق کے بعد صحبت کی جائے تو اسے رجوع ہو جاتا ہے، لیکن یہاں تو رجوع کا ہونا یقینی نہیں، جب یقینی نہیں تو رجوع ثابت نہیں ہوگا، رجوع ثابت نہیں ہوگا، بلکہ یوں ہی سمجھیں گے کہ یہ حمل طلاق سے پہلے ٹھہرا تھا، اور نیز معلوم ہوا یہ طلاق کے وقت حاملہ تھی، جب یہ حاملہ تھی تو اس نے دو سال سے پہلے بچے کو جنم دیا، تو جیسے ہی بچے کو جنم دے گی ساتھ ہی اس کی عدت بھی ختم ہو جائے گی. تو کہتے ہیں وَإِن جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ، اور اگر یہ عورت بچے کو لے آئی دو سال سے کم کے اندر، بانت مِنْ زَوْجِهَا، تو یہ جدا ہو جائے گی اپنے خاوند سے، بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، عدت کے گزر جانے کی وجہ سے، کیونکہ بچے کو جنم دیا ہے، وَثَبَتَ نَسَبُهُ، اور اس بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا، لِوُجُودِ الْعُلُوقِ فِي النِّكَاحِ أَوْ فِي الْعِدَّةِ، اس لیے کیونکہ یہ علوق پایا گیا ہے، یہ حمل کا ٹھہرنا پایا گیا ہے، فِي النِّكَاحِ أَوْ فِي الْعِدَّةِ، نکاح میں یا عدت میں، دونوں احتمال ہیں، لیکن ولا یصیر مراجعا، لیکن خاوند جو ہے رجوع کرنے والا نہیں ہوگا، لأنه یحتمل العلوق قبل الطلاق، اس لیے کیونکہ یہاں پر طلاق سے پہلے بھی حمل ٹھہرنے کا احتمال ہے، ویحتمل بعده، اور طلاق کے بعد بھی حمل ٹھہرنے کا احتمال ہے، فلا یصیر مراجعا بالشک، کی تو یہ شک کی وجہ سے رجوع کرنے والا نہیں ہوگا، شک کی وجہ سے رجوع کرنے والا نہیں بنے گا. وَإِن جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ، اور اگر عورت بچے کو لے کر آئی ہے دو سال سے زیادہ کے اندر، کانت رجعتن، تو یہ رجوع ہوگا بھائی، لِأَنَّ الْعُلُوقَ بَعْدَ الطَّلَاقِ، اس لیے کیونکہ حمل کا ٹھہرنا جو ہے وہ طلاق کے بعد ہے، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْهُ، اور ظاہر یہی ہے کہ یہ علوق خاوند سے ہی ہوگا، یہ حمل خاوند سے ہی ٹھہرا ہوگا، لانتفاء الزنا منہا، اس عورت سے زنا کے منتفی ہونے کی وجہ سے، اس عورت سے زنا کے منتفی ہونے کی وجہ سے، یاد رکھو یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے، مسلمان کے فعل میں دو احتمال ہوں، ایک خیر والا اور ایک شر والا، تو اس کو خیر والی صورت پر محمول کریں گے. تو یہاں پر بھی اس عورت سے یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے دو سال کے بعد پیدا ہوا ہے، تو ایک احتمال یہ ہے کہ خاوند نے صحبت کی ہو عدت کے اندر، اور ایک احتمال یہ ہے کہ یہ بچہ زنا سے پیدا ہوا ہو، تو ایک خیر والا احتمال ہے ایک شر والا. تو چونکہ عورت مسلمان ہے تو اس کی حالت کو خیر والے احتمال پر محمول کریں گے کہ اس نے زنا نہیں کیا ہوگا، مسلمان زنا نہیں کر سکتا، اس کے خاوند نے اس کے ساتھ عدت کے اندر صحبت کی ہوگی بھائی. یہ معنی ہے وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْهُ، اور ظاہر یہی ہے کہ یہ جو علوق ہوا ہے یہ اسی خاوند سے ہے، لِانْتِفَاءِ الزِّنَاءِ مِنْهَا، اس لیے کیونکہ عورت سے زنا منتفی ہے، فَيَصِيرُ بِالْوَطْءِ مُرَاجِعًا، تو وطی کی وجہ سے خاوند رجوع کرنے والا ہو جائے گا، یعنی اس کو رجوع کرنے والا شمار کریں گے. آگے دیکھیے وَالْمَبْتُوتَةُ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا إِذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ. اچھا بھائی، مطلق رجعیہ کا بچہ، وہ تو چاہے دو سال سے کم میں ہو، چاہے دو سال پہ ہو، چاہے دو سال سے زیادہ، وہاں نسب ثابت ہو جائے گا، اور خاوند نفی کرنا چاہتا ہے تو لعان کر لے، और अगर मुतलक मबतूता है जिसको खावन ने तलाकें बाइन दी है या तीन तलाकें दी हैं तो उसके बारे में बतला रहे हैं कि ये दो साल से कम के अंदर बच्चे को ले आई तो नसब साबित होगा, दो साल या दो साल से ज्यादा में बच्चे को लाई तो नसब साबित नहीं। यानी तलाक में और बच्चे की पैदाइश में दो साल से कम की मुद्दत हो भाई, यानी एक दिन भी कम हो तो काफी है भाई। मालूम हुआ कि तलाक से ऐन एक दिन पहले खावन ने सोहबत की थी भाई और उसकी वजह से यह हमल ठहर गया था। तो कहते हैं वल मबतूता तु यसबुतु नसबु वलदिहा, और मबतूता जो है उसके बच्चे का नसब साबित हो जाता है, इदा जाअत बिही लिअक्ल मिन सनतैन, जब वो बच्चे को ले आए दो साल से कम वक्त के अंदर, लिअन्नहु यहतमिलु अन यकून अलवलदु काइमन वक्त अत्तलाक, इसलिए क्योंकि यह इहतमाल है कि हो सकता है यह बच्चा मौजूद हो तलाक के वक्त, यानी हमल ठहर चुका है, फला यतयक्कनु बिज़वालिल फिराशि क़ब्ल अलउलूक, लिहाजा यह बात यकीनी नहीं है कि फिराश जायल हो चुका था कबल अलू की हमल ठहरने से पहले ही, ये दो साल से पहले इसने बच्चे को जन्म दिया तो एहतमाल है कि ये हमल तलाक से पहले ठहरा था। तो मालूम हुआ कि जिस वक्त जवाल फिराश हुआ उस वक्त हमल ठहर चुका था भाई, फला यतयक्कनु बिज़वालिल फिराशी, तो लिहाजा फिराश का जायल होना ये यकीनी नहीं है, कबल अलउलूक हमल के ठहरने से पहले, यानी हमल ठहरने के बाद जवाल फिराश हुआ है यानी तलाक हुई है, फयसबुतुन नसब एहतियातन, तो नसब एहतियातन साबित हो जाएगा, व इदा जाअत बिही लितमाम सनतैन मिन वक्त अलफुरकति लम यसबुत, और अगर ये मुतल्लक मबतूता जो है ये ले आई बच्चे को लितमाम सनतैन दो साल के पूरा होने के वक्त, मिन वक्त अलफुरकति जुदाई के वक्त से, लम यसबुत, तो अब नसब साबित नहीं होगा, लिअन्न अलहमल हादिसुन बाद अत्तलाकी, इसलिए क्योंकि यह हमल पेश आया है तलाक के बाद, तलाक से दो साल पूरे हो चुके हैं, तो मालूम हुआ अगर तलाक से पहले की तरफ निस्बत करेंगे तो ये तो दो साल से ज्यादा मुद्दत हो जाएगी और हमल तो दो साल से ज्यादा मां के पेट में नहीं रह सकता, मालूम हुआ यह हमल तलाक के बाद ही ठहरा है, तलाक से पहले इसके ठहरने का इम्कान नहीं है भाई। तो कहते हैं लिअन्न अलहम्ल हादिसुन बाद अत्तलाकी, इसलिए क्योंकि यह हमल पेश आया है बाद अत्तलाकी तलाक के बाद, फला यकूनु मिनहु, लिहाजा ये इस खावन से नहीं होगा, लिअन्न वतअहा हरामुन, क्योंकि इस औरत की वती तो उस पर हराम है और वो यकीनन हराम से अपने आप को बचाएगा भाई, इल्ला अय्यदअयहु, हां एक सूरत है अगर खावन खुद दावा कर दे ये मेरा बच्चा है, दो साल से ज्यादा मुद्दत गुजर गई या दो साल गुजर गए या दो साल से ज्यादा मुद्दत गुजर गई और खावंद कहता है ये मेरा ही बच्चा है तो अब भी नसब साबित हो जाएगा भाई। अब कैसे नसब साबित होगा, अभी तो आपने हमें बताया कि तलाक के बाद अगर खावंद सोहबत करेगा वो तो हराम है, वो तो जिना है भाई। तो कहते हैं भाई इसकी भी सूरत है, हो सकता है खावंद ने उससे वती भी शुबा कर ली हो, क्या कर ली हो, वती भी शुबा कर ली हो, खावंद का ख्याल था कि ये तलाके बाइन के बावजूद अभी शायद मेरे लिए हराम नहीं है और वो वती कर लेता है बाद में किसी वक्त, अभी इद्दत पूरी नहीं हुई, इद्दत लंबी हो गई औरत की और खावन ने इद्दत के दौरान उससे सोहबत कर ली, खावन कहता है मेरा तो ख्याल था कि अभी भी ये औरत मेरे लिए हलाल है भाई। तो देखो सूरत आ गई या नहीं, तो नसब साबित करना है जिस तरह भी हो सके और यहां तो बिलखसूस वो खुद दावा कर रहा है भाई। तो कहते हैं इल्ला अय्यदअयहु, मगर ये कि खावंद उसका दावा कर दे, लिअन्नहु इल्तज़महु, क्योंकि खावंद ने खुद उसका इल्तिजाम कर लिया, खुद उसको नसब को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, वलहु वजहुन, और इसकी भी एक वजह है भाई, खावंद कैसे दावा कर सकता है, दो साल से ज्यादा मुद्दत गुजर चुकी है। तो मैंने आपको बतलाया कि किस पर महमूल करेंगे कि खावंद ने वती बिशुबा कर ली हो, वो ही बयान कर रहे हैं, कहते हैं वलहु वजहुन, और इसकी भी वजह है यानी इसकी भी सूरत है, बि अन वती अहा बिशुबहतिन फिल इद्दति, बई सूरत के खावंद ने इस औरत से वती बिशुबा कर ली इद्दत के अंदर, तो लिहाजा नसब साबित हो जाएगा। आगे देखिए, फइन कानतिल मबतूतु सगीरतन युजामउ मिस्लुहा फजाअत बिवलदिन लितिसअति अशहुरिन लम यलज़महु हत्ता ताती बिही लिअक़ल्ल मिन तिसअति अशहुरिन इंदा अबी हनीफा व मुहम्मदिन रहिमहुमल्लाह, وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يثبت النسب منه إلى سنتين। भाई कबीरा की बात गुजर गई, कबीरा को अगर तलाक रजई दी है खावंद ने तो दो साल से ज्यादा के अंदर भी नसब साबित हो जाएगा। और मुतल्लका मबतूता का भी बयान गुजर गया कबीरा कि अगर उसको तलाक बाइन दी है तो दो साल से कम में बच्चे को लाई तो नसब साबित होगा, ज्यादा में लाई तो नसब साबित नहीं होगा, इल्ला ये कि खावंद खुद उसका दावा कर दे। अब सगीरा की बात आ गई, सगीरा के अंदर भी दो सूरतें हैं कि वो बीवी जिसको खावंद ने तलाक दी है वो सगीरा है ना बालिगा है, तो यहां पर भी दो सूरतें बनेंगी कि या तो इसको खावंद ने तलाक रजई दी होगी या तलाक बाइन दी होगी। तो पहले आप तलाक बाइन को बयान कर रहे हैं, तो याद रखो तरफैन रहिमहुमल्ला फरमाते हैं कि अगर वो औरत जिसको खावंद ने तलाक बाइन दी है और वो सगीरा है लेकिन ऐसी सगीरा है कि वो करीबुल बुलूग है, बालिगा होने के करीब है, यानी मुराहिका है, मुराहिक उस बच्चे को कहते हैं जो बालिग होने के करीब हो, अभी बालिग तो नहीं हुआ लेकिन बालिग होने के करीब है, उसको कहते हैं मुराहिक भाई। तो अगर ये जो बीवी है जिसको खावंद ने तलाक बाइन दी है या तीन तलाकें दी हैं, ये मुराहिका है और मदखूल बीहा है, खावंद इसके साथ सोहबत कर चुका है, तो अगर ये सगीरा तलाक के बाद 9 महीने से कम के अंदर बच्चा ले आई तो ये नसब साबित हो जाएगा। 9 महीने से कम के अंदर बच्चा ले आई तो नसब साबित हो जाएगा, और अगर 9 महीने या 9 महीने से ज्यादा हुए फिर नसब साबित नहीं होगा। किस तरह? वो फरमाते हैं कि देखो ये सगीरा है, इसको तो हैज आता नहीं, तो लिहाजा इसकी इद्दत मुतायन है, वो महीनों के साथ ही शुमार होगी, और इसकी इद्दत 3 महीने होगी, और तो इद्दत के हुए 3 महीने, और इद्दत के बाद फिर 6 महीने, हमल की कम से कम मुद्दत कितनी है 6 महीने, तो इद्दत के बाद अगर 6 महीने पूरे गुजर गए और बच्चे की पैदाइश हुई तो यह तो एहतमाल है कि इद्दत के बाद किसी ने सोहबत की है, क्योंकि इतना वक्त है जिसमें सही सलामत बच्चे की पैदाइश हो सकती है, लिहाजा वो इद्दत और कम से कम हमल की मुद्दत मिलाएं तो ये 9 महीने बनते हैं। तो अगर 9 महीने या इससे ज्यादा में बच्चा लाई तो नसब साबित नहीं, लेकिन अगर 9 महीने से कम के अंदर वो बच्चा लाई है तो फिर तो इद्दत के बाद इतनी मुद्दत नहीं है जिसके अंदर हमल ठहर सके, तो फिर इस सूरत में नसब साबित हो जाएगा। तो देखो बालिगा के अंदर, बालिगा के अंदर हमल की अक्सर मुद्दत का एतबार किया गया और सगीरा के अंदर हमल की अकल मुद्दत का एतबार किया गया। वजह यह कि वह बालिगा के अंदर हमल का इम्कान था और सगीरा में हमल का इम्कान ही नहीं, और नीज यह बालिगा होने के करीब भी है, बालिगा तो नहीं लेकिन बालिगा होने के करीब है, लिहाजा यहां पर अकल मुद्दत का एतबार करेंगे। अगर 6 माह या 6 माह से ज्यादा गुजर गए इद्दत के बाद तो हो सकता है अब बालिगा हुई हो और अब किसी और से यह हमल ठहर गया हो जी। तो कहते हैं फइन कानत मबतूता तो सगीरा तन, और अगर मबतूता जो है वो ऐसी सगीरा है, देखो सगीरा नकेरा है और युजामा उफेल उसके बाद आ रहा है तो ये मौसूफ सिफत बनेंगे। कहते हैं फइन कानत मबतूता तो सगीरा तन युजामा मिसलुहा, और अगर वो मबतूता ऐसी सगीरा है कि युजामा मिसलुहा कि इस जैसी के साथ जिमा किया जा सकता है, जिमा किया जा सकता है, और आप जानते हैं कि कम से कम 9 साल की उम्र में लड़की बालिगा हो सकती है, लड़की बालिगा हो सकती है, तो लिहाजा मालूम हुआ 9 साल से कम ना हो इसकी उम्र और नीज 15 साल से ज्यादा ना हो, क्योंकि लड़का या लड़की 15 साल की उम्र को पहुंच जाए फिर वो बालिग ही शुमार होते हैं, उन पर बालिगों ही के अहकाम लागू हो जाते हैं, चाहे बुलूग की कोई अलामत जाहिर ना हो लेकिन उम्र 15 साल हो गई तो लड़का हो या लड़की वो बालिग शुमार होते हैं और उन पर वो तमाम अहकाम लाजिम हो जाएंगे जो बालिगों पर लाजिम होते हैं भाई। तो मालूम हुआ ये मुराहिका मदखूल बीहा है, 9 साल से ज्यादा हो और 15 साल से कम हो इसकी उम्र भाई। तो कहते हैं फइन कानतिल मबतूता तो सगीरतन युजामा मिसलुहा, और अगर वो मबतूता ऐसी ना बालिगा है कि इस जैसी से सोहबत की जा सकती है, फजाअत बिवलदिन लितिसअति अशहुरिन, तो ये बच्चे को ले आई 9 माह में, लम यल जम हु, तो ये बच्चा खावंद पर लाजिम नहीं यानी नसब साबित नहीं होगा, हत्ता ताती अभी ली अकल मिन तिसअति अशहरीन, यहां तक ये बच्चे को ले आए 9 माह से कम में, इंद अबी हनीफत व मुहम्मदिन रहिमहुमल्ला तरफेन रहिमहुमल्ला के नजदीक, وقال ابو يوسف رحمه الله يثبت النسب منه الى سنتين, और इमाम अबू यूसुफ रहमल्ला फरमाते हैं कि इसे नसब साबित हो जाएगा 2 साल तक। इमाम अबू यूसुफ रहमल्ला के नजदीक कबीरा हो या सगीरा मुराहिका दोनों का एक ही हुक्म है, क्योंकि ये जो मुराहिका है इसका भी हर लम्हे के अंदर बालिग होने का इहतमाल है, ये बालिग होने वाली है तो हर लम्हे के अंदर इसके बालिग होने का इहतमाल है। जब इहतमाल है तो जैसे कबीरा जो है 2 साल तक बच्चे को ले आए तो वह नसब साबित हो जाता है, तो लिहाजा हो सकता है यहां पर भी यह हामिला हो चुकी हो और 2 साल से पहले यह बच्चे को जन्म दे दे तो वो इसी खावन से शुमार होगा भाई। तो कहते हैं वकाल अबू यूसुफ रहमला यसबुतु नसब मिनहु इला सनतैनी, के इससे नसब साबित हो जाएगा 2 साल तक, लिअन्नहा मुअतद्दतुन, इसलिए क्योंकि यह इद्दत गुजार रही है, यहतमिलु अन तकूना हामिलन, यह भी इहतमाल है कि यह हामिला हो चुकी हो, वलम तुकिर्र बिन्क़िज़ा इद्दती, और हाल यह है कि इसने इद्दत के गुजरने का इकरार नहीं किया, फअशबहतिल कबीरा था, तो यह कबीरा के मुशाबे हो गई, कबीरा ने भी जब इद्दत के गुजरने का इकरार नहीं किया तो वहां भी हमल का इहतमाल मौजूद है और सगीरा के अंदर भी यह इहतमाल मौजूद है, तो 2 साल से पहले बच्चे को जन्म दे देगी तो नसब साबित हो जाएगा भाई। वजह यह कि यह सगीरा मुराहिका है और हर हर लम्हे इसके बालिग होने का इहतमाल है, तो हो सकता है आखिरी तलाक से पहले यह क्या हो गई हो, बालिगा हो गई हो और खावन ने सोहबत की और हमल ठहर गया और अब यह इद्दत गुजार रही है और इसने अभी तक इद्दत के गुजरने का इकरार नहीं किया तो नसब साबित हो जाएगा। तो कहते हैं वलम तुकिर बिन क़िज़ा इद्दती, और हाल यह है कि इस सगीरा मुराहिका ने इद्दत के गुजरने का इकरार नहीं किया, फअशबहतिल कबीरा था, तो ये कबीरा के यानी बालिगा के मुशाबे हो गई, वलहुमा तरफेन की दलील यह है कि अन्नल इन्क़िज़ा इद्दतिहा जिहतम मुअय्यनतन, कि इस औरत की इद्दत के गुजरने के लिए जिहत मुतय्यन है। तरफेन फरमाते हैं कि इसके हामिला होने का एक इहतमाल है सिर्फ, तो इहतमाल की तरफ तवज्जो नहीं की जाएगी, यह सगीरा है, जब यह सगीरा है तो इसकी इद्दत महीनों के साथ मुकर्रर है, लिहाजा महीनों के साथ इद्दत को शुमार करेंगे और जब 3 महीने गुजर गए तो इद्दत गुजर गई। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते थे कि इसने अभी तक इद्दत के गुजरने का इकरार नहीं किया, कहते हैं भाई इसकी इद्दत है ही महीनों के साथ, 3 महीने गुजर गए तो इद्दत गुजर गई, चाहे ये इकरार करे या ना करे, क्योंकि शरीयत ने इसकी इद्दत 3 महीने मुकरर की है, तो 3 महीने जैसे ही गुजरेंगे शरीयत हुक्म लगा देगी इसकी इद्दत गुजर गई, तो एक इसका अपना इकरार है, ये कहे मेरी इद्दत गुजर गई, उसमें तो झूठ का भी इहतमाल हो सकता है, लेकिन शरीयत की बात में तो झूठ का इहतमाल नहीं। तवज्जो है, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह क्या फरमा रहे थे कि इसने अभी तक इद्दत के गुजरने का इकरार नहीं किया, तो उसका जवाब दे रहे हैं कि भाई अगर ये इकरार कर भी ले उसके बावजूद वहां झूठ का इहतमाल तो रहता है, लेकिन यहां तो शरीयत हुक्म लगा रही है और शरीयत की बात में तो झूठ का इहतमाल नहीं है, लिहाजा 3 माह गुजरने के बाद कतई तौर पर इसकी इद्दत गुजर गई, क्योंकि एक ऐसी दलील आ गई जो इसके इकरार से भी बढ़कर है, इसके इकरार से भी बढ़कर है, जिसने बतला दिया कि इसकी इद्दत गुजर चुकी है, लिहाजा इसकी इद्दत कतई तौर पर गुजर गई। तो बल्कि यूं समझो ये इसी तरह है जैसे इसने खुद ही इकरार कर लिया हो, ये शरई दलील जब आ गई तो इस ये जुबान से कुछ भी ना कहे लेकिन ये इससे बढ़कर उसके इकरार से बढ़कर दलील है, तो यूं समझो इसने खुद ही इकरार ही कर लिया है भाई कि मेरी इद्दत गुजर चुकी है। तो जब इद्दत गुजर गई है उसके बाद अब 6 माह से कम के अंदर बच्चे को जन्म देगी तो हम कहेंगे कि ये हामिला थी पहले से, और अगर 6 माह पूरे गुजर गए इस इद्दत के बाद तो ये तो अब इतनी मुद्दत है जिसमें नया हमल करार पा सकता है, लिहाजा इस सूरत में फिर नसब साबित नहीं होगा। تو کہتے ہیں ولہما طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ان الانقضاء عدتها کی اس عورت کے عدت کے گزرنے کے لیے جہتا معینتا ایک متعین جہت ہے وہو الاشہر اور وہ مہینے ہیں فبمضیها یحکم الشرع بالانقضاء فبمضیها تو ان مہینوں کے گزر جانے سے یحکم الشرع شریعت حکم لگا دیتی ہے بالانقضاء عدت کے گزر جانے کا وہو فی الدلالت فوق اقرارها اور یہ شریعت کا جو حکم ہے دلالت کے اندر اس کے اپنے اقرار سے بڑھ کر ہے اس کے اپنے اقرار سے بڑھ کر ہے لئنہ لا یحتمل الخلاف اس لیے کیونکہ شریعت کا جو حکم ہے وہ تو خلاف کا احتمال نہیں رکھتا یعنی وہاں تو جھوٹ وغیرہ کا احتمال نہیں ہے والاقرار یحتملہ اور اس کا اپنا اقرار وہ تو خلاف کا بھی احتمال رکھتا ہے مثلا یہ کہے ابھی عدت نہیں گزری تو ہو سکتا ہے عدت گزر گئی ہو یا یہ کہے عدت گزر گئی ہے اور ہو سکتا ہے ابھی نہ گزری ہو تو اس کے اقرار کے تو خلاف کا بھی احتمال ہے تو کہتے ہیں ولی قرار یحتملہ اور اس کا اقرار جو ہے خلاف کا یعنی جھوٹ کا احتمال رکھتا ہے وَإِن كَانَتْ مُطَلَّقَةً طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَهُمَا تو یہ تو مراحقہ مبتوتہ کا حکم تھا اور اگر مراحقہ رجعیہ ہو گئی اگر مراحقہ رجعیہ ہو یعنی جس کو خاوند نے طلاق رجعی دی ہے تو یاد رکھو طرفین فرماتے ہیں اس کا بھی یہی حکم ہے اس کا بھی یہی حکم ہے اگر خاوند طلاق رجعی دی ہے اگر طلاق اور بچے کی پیدائش میں 9 ماہ سے کم مدت ہے تو پھر نسب ثابت ہوگا اگر 9 ماہ یا اس سے زیادہ ہے تو پھر نسب ثابت نہیں ہوگا تو طرفین کے نزدیک مراحقہ چاہے مبتوتہ ہو چاہے رجعیہ ہو دونوں کا ایک ہی حکم ہے تو کہتے ہیں وہ ان کانت متلقتن طلاقن رجعین اور اگر یہ صغیرہ جو ہے متلقہ ہو طلاق رجعی کے ساتھ فکذلک الجواب عندہما تو بھی جواب اسی طرح ہے طرفین کے نزدیک وعندہ جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرق کرتے ہیں متلقہ مبتوتہ کے اندر تو انہوں نے بتلا دیا کہ 2 سال سے کم کے اندر بھی وہ بچے کو لے آئے تو نسب ثابت ہو جائے گا جبکہ مراحقہ رجعیہ جو ہے اس کے اندر امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 27 مہینے سے کم کے اندر بچے کو جنم دے دے تو نسب ثابت ہو جائے گا 27 مہینے کیونکہ 3 مہینے اس کی عدت کے ہیں اور اس کے بعد 2 سال جو ہیں مدت حمل ہے یعنی 24 مہینے 24 اور 3 27 اور 27 سے 1 دن کم 27 ماہ سے 1 دن کم کے اندر بھی اگر یہ بچے کو جنم دے دے گی تو نسب ثابت ہو جائے گا اور ہم اس کو اس بات پر محمول کریں گے کہ خاوند نے عدت کے آخر میں صحبت کر لی طلاق رجعی ہے نا تو عدت کے آخر میں صحبت کر لی اور اس کے بعد 2 سال سے کم کے اندر بچہ پیدا ہو گیا تو نسب ثابت ہو جائے گا تو کہتے ہیں وعندہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یثبت الی 27 شہرا کہ نسب ثابت ہو جائے گا 27 مہینوں تک یعنی 27 مہینوں سے کم ہو 1 دن بھائی لانہ یجعل واطئا فی آخر العدت اس لیے کیونکہ خاوند کو صحبت کرنے والا قرار دیا جائے گا عدت کے آخر میں وہی الثلاثۃ الاشہر اور یہ عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہیں اور وہ عدت 3 مہینے ہیں تو کہتے ہیں وہی الثلاثۃ الاشہر الثلاثہ کو بنا لیں مبدل اور الاشہر کو بنا لیں بدل اور بدل کا وہی اعراب ہوتا ہے جو مبدل منہ کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہی الثلاثۃ الاشہر اور وہ عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہی ہیں ثم تأتی بہ لأکثر مدت الحمل پھر اس کے بعد وہ بچے کو لے آئی اکثر مدت حمل میں وہ سناتانی اور وہ 2 سال ہیں وہ ان کانت صغیرت دعت الحبل فی العدت فل جواب فیحا و فل کبیرتی سوا ان صورت مسئلہ یہ کہ عدت کے اندر اگر کبیرہ حمل کا اعتراف کر لے حمل کا اقرار کر لے عدت کے اندر اگر کبیرہ نے حمل کا اعتراف کر لیا تو اس صورت میں نسب ثابت ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر یہ جو مراہقہ صغیرہ تھی جو قریب البلوغ تھی اس نے بھی اگر عدت کے دوران حمل کا اعتراف کر لیا تو اس صورت میں اس کا وہی حکم ہوگا جو کبیرہ کا تھا اور کبیرہ کے اندر تو نسب ثابت ہو جاتا تھا, لہذا اس میں بھی نسب ثابت ہو جائے گا کیونکہ جب یہ حاملہ ہے معلوم ہو یہ بالغہ ہو چکی ہے بھائی, اور جب بالغہ ہو چکی ہے تو بالغوں والے احکام جاری ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں وہ انکانت صغیرت, اور اگر وہ جو صغیرہ ہے اس نے ادعت الحبل اس نے حمل کا دعویٰ کر دیا فی العدت عدت کے اندر فل جواب فیہا وفی الکبیرت سوا ان تو جواب اس صغیرہ مراہقہ کے اندر اور کبیرہ کے اندر سوا ان برابر ہے, یعنی ایک ہی صورت ہوگی مسئلے کی. لئن باقرارہا یحکم ببلوغہا لأن بإقرارها يحكم ببلوغها, اس لیے کیونکہ اس کے اقرار کی وجہ سے يحكم شریعت حکم لگا دیتی ہے ببلوغها اس کے بالغ ہونے کا. جب اس نے خود اقرار کر لیا میں حاملہ ہوں اور حاملہ تو بالغہ ہو سکتی ہے غیر بالغہ تو حاملہ نہیں ہو سکتی, تو جب اس نے خود اقرار کر لیا تو شریعت بھی اس کے بالغ ہونے کا حکم لگا دے گی. تو یحکموں کے اندر ضمیر راجع کر دیں پیچھے جو آیا تھا الشرع اس کی طرف, لئن باقرارہا اس لیے کیونکہ اس صغیرہ کے اقرار کی وجہ سے یحکم ببلوغہا شریعت حکم لگا دیتی ہے ببلوغہا اس کے بالغ ہونے کا. یا یوں پڑھ لیں مجہول پڑھ لیں لئن باقرارہا اس لیے کیونکہ صغیرہ کے اقرار کی وجہ سے یحکم ببلوغہا حکم لگا دیا جائے گا اس کے بالغ ہونے کا. تو حاصل کلام کیا ہوا کہ کبیرہ رجعیہ ہو تو دو سال سے زیادہ میں بھی بچے کو جنم دے گی تو نسب ثابت ہو جائے گا, اور اگر کبیرہ مبتوتہ ہو تو دو سال سے کم میں بچے کو جنم دے گی تو نسب ثابت ہوگا, اور اگر دو سال یا زیادہ میں بچے کو جنم دیا تو نسب ثابت نہیں الا یہ کہ خاوند خود اس کا دعویٰ کر دے. جبکہ صغیرہ مراہقہ جو ہے اس کے اندر طرفین فرماتے ہیں چاہے وہ مبتوتہ ہو چاہے متعلقہ رجعیہ ہو دونوں صورتوں کے اندر طلاق سے لے کر بچے کی پیدائش میں 9 ماہ سے کم کی مدت ہو تو نسب ثابت ہوگا ورنہ نسب ثابت نہیں ہوگا. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صغیرہ اگر مبتوتہ ہے یہ جو صغیرہ مراہقہ ہے اگر یہ مبتوتہ ہے تو پھر یہ طلاق کے بعد 2 سال سے کم کے اندر بچے کو جنم دے تو نسب ثابت ہو جائے گا, اور اگر یہ متعلقہ رجعیہ ہے تو پھر اس صورت کے اندر 27 ماہ سے کم کے اندر یہ بچے کو جنم دے تو نسب ثابت ہو جائے گا, اور خاوند اگر نفی کرنا چاہتا ہے تو لعان کے ذریعے نفی بھی کر سکتا ہے. آگے دیکھیے بھائی وَيَسْبُتُ النَّسَبُ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مَا بَيْنَ الْوَفَاتِ وَبَيْنَ السَّنَتَيْنِ. اب اس عورت کا ذکر آیا جس کے خاوند کا انتقال ہو چکا ہے, اگر وہ بچے کو جنم دے گی تو کب تک نسب ثابت ہوگا بھائی, کتنی مدت کے اندر وہ بچے کو جنم دے تو نسب ثابت ہوگا. تو دیکھیے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وَيَسْبُتُ النَّسَبُ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا کہ وہ عورت جس کے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے اس کے بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا. ما بین الوفات و بین السنتین کہ جب جو ہے وفات اور بچے کی پیدائش میں 2 سال کی مدت ہو بھائی, خاوند کی وفات اور بچے کی پیدائش میں 2 سال کی مدت ہو یعنی اس کے بیچ کی مدت ہو یعنی 2 سال سے کم کی مدت ہو. کیا کہا؟ وفات اور 2 سال کے بیچ کی مدت ہے یعنی 2 سال سے کم کی مدت ہو گئی, بات سمجھ میں آ گئی. وقال ظفر رحمہ اللہ اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا جاءت به بعد انقضاء عدت الوفات لستة اشہر لا يثبت النسب. امام ظفر ادھر دیکھیے بھائی, امام ظفر رحمہ اللہ اس کو قیاس کرتے ہیں صغیرہ پر بھائی, اور صغیرہ کے اندر اس کی عدت مہینوں کے ساتھ ہی 3 مہینے اور اس کے بعد 6 ماہ سے کم کے اندر وہ عورت بچے کو جنم دے تو نسب ثابت ہوتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی اسی طرح ہے, اس عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے کیونکہ خاوند کا انتقال ہوا ہے, اور 4 مہینے 10 دن کے بعد پورے 6 مہینے گزر گئے یعنی 4 مہینے اور 10 دن اور اس کے ساتھ 6 مہینے اور ملا دو 10 مہینے 10 دن, تو 10 مہینے اور 10 دن پر اگر اس نے بچے کو جنم دیا تو نسب ثابت نہیں ہوگا کیونکہ پورے 6 مہینے گزر چکے ہیں عدت کے بعد. اگر اسے 1 دن بھی کم تھا تو پھر نسب ثابت ہو جائے گا. دلیل ان کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ चार महीने दस दिन इद्दत के गुजरे और उसके बाद पूरे छह महीने नहीं गुजरने चाहिए, एक दिन कम कम अज कम हो। तो ये दस महीने दस दिन से कबल बच्चे को औरत ये औरत जन्म दे देगी तो नसब साबित हो जाएगा मरने वाले खावंद से। और अगर पूरे दस महीने दस दिन गुजर गए या इससे ज्यादा गुजर गए हैं अब तो इद्दत के बाद भी हमल ठहरने का इहतमाल है, लिहाजा इस सूरत में फिर नसब साबित नहीं होगा। तो कहते हैं वकाल जुफर रहमहुल्ला और इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं इदा जाअत बिही बादन क़ज़ा इद्दतिल वफाती कि जब ये औरत बच्चे को ले आई वफात की इद्दत के गुजर जाने के बाद लिसित्तति अशहुरिन छह माह, वफात की इद्दत के गुजरने के छह माह के बाद ये बच्चे को लाई है ला यसबुतुन नसबुत नसब साबित नहीं होगा लिअन्न शरअ हकम बिन क़ज़ा इद्दतिहा बिशुहूरी इसलिए क्योंकि शरीयत ने हुक्म लगा दिया इसके इद्दत के गुजर जाने का बिशुहूरी महीनों के साथ। इमाम ज़ुफ़र फरमाते हैं उसी तरह जैसे सगीरा में था, सगीरा के अंदर हमने कहा था सगीरा इकरार करे या ना करे तीन माह के बाद शरीयत हुक्म लगा देगी इसकी इद्दत गुजर गई, और शरीयत का हुक्म लगाना ये इसके अपने इकरार से भी बढ़कर है। तो लिहाजा इस औरत के अंदर भी चार महीने दस दिन जब गुजर गए तो शरीयत हुक्म लगा देगी कि इसकी इद्दत गुजर गई, ये चाहे इकरार करे या इकरार ना करे क्योंकि इसके इकरार से बढ़कर एक चीज आ गई। तो यूं ही समझो गोया इसने इकरार कर ही लिया, तो जाहिर सी बात है यह भी इकरार से कम नहीं है, तो गोया इसने इकरार कर लिया कि जब चार महीने दस दिन गुजरे इसने इकरार कर लिया कि मेरी इद्दत गुजर गई और फिर उसके बाद छह माह के बाद बच्चे को जन्म दे रही है तो यह तो इतनी मुद्दत है जिसमें नया हमल ठहर सकता है, लिहाजा यह खावन से साबित नहीं होगा। लेकिन अगर उससे कम के अंदर बच्चे को ले आई मालूम हुआ कि यह उसी खावन से है भाई, क्योंकि अब तो इतनी मुद्दत नहीं है कि जिसमें हमल भी ठहर सके और एक तंदुरुस्त बच्चे की भी पैदाइश हो सके भाई। तो कहते हैं लिअन्न शरअ हकम बिन क़ज़ा इद्दतिहा बिशुहूरी इसलिए क्योंकि शरीयत ने हुक्म लगा दिया इसके इद्दत के गुजरने का बिशुहूरी महीनों के साथ लितायुनिल जिहती क्योंकि इसकी भी जिहत मुतायन है, जैसे सगीरा की इद्दत की जिहत मुतायन थी महीनों के साथ शुमार होती थी इसी तरह मुतवफा अनहा ज़ौजुहा जिसके खावन का इंतकाल हुआ है उसकी भी इद्दत की जिहत मुतायन है वो चार महीने दस दिन है, तो यह माना है लितायुनिल जिहती उसकी जिहत मुतायन होने की वजह से फसार कमा इदा अकर्रत बिल इनकिजाई तो यह इसी तरह हो गया कि जैसे इसने इकरार कर लिया है इद्दत के गुजरने का, जब इसके इकरार से बढ़कर एक चीज आ गई है तो यूं ही समझो गोया इसका भाई जो चीज आई है वो इकरार से भी बढ़कर है तो यह गोया इकरार कर चुकी है। जब यह इकरार करती थी तो इद्दत के गुजरने का हुक्म लगाते थे हम, तो जब इकरार से बढ़कर एक चीज आई है तब भी हम यही हुक्म लगाएंगे कि इद्दत गुजर चुकी है। तो कहते हैं कमा इदा अकर्रत बिल इनकिजाई तो ये इसी तरह है जैसे इसने इद्दत के गुजरने का इकरार कर लिया हो, कमा बैन्ना फिस सगीरती जैसे हमने सगीरा में बयान कर दिया, इल्ला अन्ना नकूलू मगर यह कि हम कहते हैं इमाम जुफर के नजदीक वो औरत जिसके खावन का इंतकाल हो जाए अगर वो 10 महीने 10 दिन से कम के अंदर बच्चा लाएगी तो नसब साबित होगा वरना नसब साबित नहीं, जबकि हमारे अइमा फरमाते हैं कि खावन के इंतकाल के बाद दो साल से पहले पहले ये औरत बच्चे को ले आए तो नसब साबित हो जाएगा। अब उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं इल्ला अन्ना नकूलू मगर यह कि हम कहते हैं लिनकिजा इद्दतिहा जिहतुन उखरा कि इस औरत के इद्दत के गुजरने की एक और जिहत भी है। सगीरा में तो महीनों के साथ ही इद्दत गुजारने की जिहत थी, सगीरा के अंदर तो हामिला होने का इम्कान नहीं क्योंकि हमल तो बालिगा को ठहरता है, नाबालिगा को तो हमल नहीं ठहरता, तो वहां तो जिहत मुतायन थी उसकी इद्दत महीनों के साथ ही शुमार की जाती थी, लेकिन यह तो कबीरा है बालिगा है और बालिगा के अंदर इद्दत वफात की इद्दत सिर्फ चार महीने दस दिन नहीं है बल्कि अगर वह हामिला हो तो इद्दत वज़ए हमल भी है। लिहाजा कबीरा के अंदर इमाम जुफर रहमतुल्लाह का यह कहना कि यहां यह जिहत मुतायन है महीनों के साथ ही गुजारेगी, हम कहते हैं नहीं यहां एक और जिहत भी मौजूद है और वो वज़ए हमल है। जब दो चीजें आ गई तो जिहत मुतायन न रही भाई, आपने तो कहा था जिहत महीनों के साथ मुतायन है लेकिन हमने बतला दिया कि वो मुतायन नहीं है भाई।
इल्ला अन्ना नकूलु, मगर यह कि हम कहते हैं लिनकिजा इद्दतिहा जिहतुन उखरा, कि इसके इद्दत के गुजरने की एक और जिहत भी है, यानी एक और सूरत भी है। वह हुआ वज़उल हमली, और वह हमल को जन्म देना है, क्योंकि यहां हामिला होने का भी इम्कान। बिखिलाफ इस सगीरती, बखिलाफ सगीरा के, लिअन्न अल असल फीहा अदमुल हमली, क्योंकि असल उसके अंदर जो है वह अदम हमल है, हमल का ना होना, क्योंकि हमल के लिए तो बालिगा होना जरूरी है। तो कहते हैं बिखिलाफ इस सगीरती, बखिलाफ सगीरा के, लिए अन्न अल असल फीहा आदमुल हमली, क्योंकि असल उसके अंदर हमल का न होना है। लि अन्नहा लैसत बि महल्लिन कबल अल बुलूगी, इसलिए क्योंकि यह हमल का महल नहीं है बालिगा होने से पहले। वफीही शक्कुन, और बालिगा होने में तो शक है, तो सिर्फ शक की वजह से इसको बालिगा करार नहीं दिया जा सकता। लिहाजा वहां तो जिहत मुतय्यन है महीनों के साथ ही, लेकिन इस कबीरा के अंदर जिहत मुतय्यन नहीं है भाई। आगे देखिए, वइदा अतरफतिल मुअतद्दतु बिनक़िज़ाइ इद्दतिहा सुम्मा जाअत बिल वलदि लिअक़ल्ल मिन सित्तति अशहरिन यसबुतु नसबुहु। सूरत है मसला ये, मुअतद्दा ने एतराफ कर लिया कि मेरी इद्दत गुजर गई है, और इस एतराफ के बाद छह माह से पहले पहले इसने एक बच्चे को जन्म दिया, मालूम हुआ यह झूठ बोल रही थी, लिहाजा इस सूरत में नसब साबित हो जाएगा। कहते हैं वइदा अतरफतिल मुअतद्दतु, और जब एतराफ कर लिया इद्दत गुजारने वाली ने बिनक़िज़ाइ इद्दतिहा अपनी इद्दत के गुजर जाने का, सुम्मा जाअत बिल वलदि, फिर वो बच्चा ले आई, लिअक़ल्ल मिन सित्तति अशहरिन, छह माह से कम में, यसबुतु नसबुहु, तो इस बच्चे का नसब साबित हो जाएगा। लिअन्नहु ज़ाहरा कदिबुहा बियकीनिन, इसलिए क्योंकि इसका झूठ जाहिर हो गया बियकीनिन यकीनी तौर पर। फबतला ले करारू, तो इसका इकरार बातिल होगा और नसब साबित हो जाएगा। व इन जाअत बिही लिसित्तति अशहरिन लम यसबुत। सूरत है मसला ये, कबीरा ने इकरार कर लिया मेरी इद्दत गुजर गई, और फिर छह माह या छह माह के बाद बच्चे को लाई, कहते हैं अब नसब साबित नहीं होगा, क्योंकि खुद उसने इकरार कर लिया मेरी इद्दत गुजर गई, और उसके बाद छह माह या उससे ज्यादा गुजर गए, और यह इतनी मुद्दत है जिसमें नया हमल करार पा सकता है, लिहाजा अब नसब साबित नहीं होगा। कहते हैं वह इन जाअत बिही लिसित्तति अशहरिन, और अगर वह छह माह बे बच्चे को लाई, लम यसबुत, नसब साबित नहीं होगा। ये इसको पिछली बात से जोड़ें, पीछे था कि उसने इद्दत के गुजरने का इकरार किया हो, और उसके बाद फिर यह छह माह के बाद बच्चे को लाई है, इकरार के छह माह बाद, तो यह माना है वह इन जाअत बिही लिसित्तति अशहरिन, और अगर अपने एतराफ के बाद ये छह माह के वक्त पर बच्चे को ले आई, लम यसबुत, तो नसब साबित नहीं होगा। लिअन्ना लम नअलम बिबुतलानिल इकरारी, इसलिए क्योंकि हम नहीं जानते इकरार के बातिल होने को। लिहतमालिल हुदूसि बादहु, क्योंकि हमल पेश आने का एहतमाल है उसके बाद भी। इकरार का बातिल होना यकीनी नहीं, क्योंकि इकरार के बाद इतनी मुद्दत गुजर गई है जिसमें हमल पेश आ सकता है। वहादल लफ्ज भी इतलाकी ही यतनावलु कुल्ल मुअतद्दतिन, और ये वाला लफ्ज, ये जो मतन में आया, व इदा अतरफतिल मुअतद्दतु, और जब मुअतद्दा एतराफ कर ले, इसमें कोई तफसील नहीं है कौन सी मुअतद्दा की बात हो रही है, मुअतद्दा तलाक बाइन है या मुअतद्दा तलाक रजई है या मुअतद्दा वफात है, कोई तफसील नहीं, यहां मुतलक है, मालूम हुआ यह हर किस्म की मुअतद्दा को शामिल है जी। तो यह माना है, कहते हैं वहादल लफ्ज़, और ये जो मतन के अंदर मुअतद्दा का लफ्ज आया, बि इतलाक ही, ये अपने इतलाक के साथ, यतनावलु कुल्ल मुअतद्दतिन, ये अपने इतलाक के साथ शामिल है हर मुअतद्दा को। वइदा वलदतिल मुअतद्दतु वलदन लम यसबुत नसबुहु इंद अबी हनीफत रहमहुल्ला इल्ला अन यशहद बिविलादतिहा रजुलानि औ रजुलुन वम्रअतानि इल्ला अन यकूना हुनाका हबलुन ज़ाहिरुन अव इतिराफुन मिन क़िबलि ज़ौजि फयसबुतु नसबु मिन गैरि शहादतिन।
सूरत मसला ये, एक औरत इद्दत गुजार रही है, और फिर वो एक बच्चा ले आई और कहती है इसको मैंने जन्म दिया है, मैंने जन्म दिया है, और खावंद उसका इनकार कर रहा है, तो इस सूरत में क्या नसब साबित होगा या नहीं? तो इमाम साहब फरमाते हैं इस सूरत में नसब साबित नहीं होगा, इल्ला ये कि ये औरत गवाह पेश कर दे, दो मर्द या एक मर्द और दो औरतें वो गवाह पेश कर दे कि उसने इसको जन्म दिया है, क्योंकि खावंद इनकार कर रहा है। याद रखो, अगर खावंद ने औरत को तलाक दी है और ये इद्दत गुजार रही है और खावंद इकरार कर चुका था कि ये हामिला है, ये हामिला है, फिर याद रखो सिर्फ एक औरत की गवाही से भी नसब साबित हो जाएगा। सूरत क्या थी? खावंद ने बीवी को तलाक दी है और खावंद ने इकरार किया था किसी वक्त कि ये हामिला है, और फिर उसके बाद ये औरत बच्चे को ले आई और खावंद कहते हैं नहीं, इस बच्चे को इसने जन्म दिया ही नहीं है, या खावंद ने इकरार नहीं किया था लेकिन औरत का हमल जाहिर था, उसकी हालत से सबको पता चल रहा था यह हामिला है। तो अगर औरत का हमल जाहिर हो या खावंद पहले इकरार कर चुका है कि यह औरत हामिला है, फिर उसके बाद यह औरत एक बच्चा ले आई और अब खावंद इनकार कर रहा है कि यह बच्चा इसका नहीं है, इसको इसने जन्म नहीं दिया, तो इस सूरत में सिर्फ एक औरत भी आकर गवाही दे दे कि ये इसी औरत ने इस बच्चे को जन्म दिया है, तो इस सूरत में नसब साबित हो जाएगा, नसब साबित हो जाएगा। वजह यह कि यहां नसब तो पहले से ही साबित था, नसब तो पहले से साबित था, सबको नजर आ रहा था यह औरत हामिला है, यह खावंद इकरार कर चुका था कि यह औरत हामिला है। अब उसके बाद खावंद इनकार इस बात का कर रहा है कि ये इस औरत का बच्चा नहीं है, इसने इसको जन्म नहीं दिया, ये किसी और का बच्चा उठाकर ले आई है। तो बच्चे का तो नसब पहले से साबित है क्योंकि हमल जाहिर था या खावंद इकरार कर चुका था। अलबत्ता अब सिर्फ इस बात की तायीन चाहिए कि इस बच्चे को इसी औरत ने जन्म दिया है या नहीं, और उसके लिए वो एक औरत जो पैदाइश के वक्त मौजूद होती है यानी काबिला यानी दाई जो है, उस दाई की गवाही से भी नसब साबित हो जाएगा। भाई ये नसब के मसाइल हैं, जरा मुश्किल हैं, इसलिए खूब अच्छी तरह समझ लो, मैं इसलिए बार बार तकरार करवा रहा हूं। खावंद ने बीवी को तलाक दे दी है और खावंद इकरार कर चुका है कि यह औरत हामिला है, या उसका हमल इतना जाहिर है कि सबको नजर आ रहा है यह औरत हामिला है भाई, और फिर उसके बाद यह औरत बच्चे को ले आई और उसने कहा इस बच्चे को मैंने जन्म दिया है, और खावंद इनकार करता है कि नहीं, इस औरत ने इस बच्चे को जन्म दिया ही नहीं, तो अब याद रखो नसब तो साबित हो चुका है पहले से ही, क्योंकि सबको पता था यह हामिला है या खावंद इकरार कर चुका है, सिर्फ अब इस बात की तायीन बाकी है कि इस बच्चे को इसी औरत ने जन्म दिया है, तो उसके लिए उस एक दाई की गवाही भी काफी है जो पैदाइश के वक्त मौजूद थी, वो जब आकर गवाही दे दे कि इसी औरत ने इस बच्चे को जन्म दिया है, तो इस बच्चे का नसब साबित हो जाएगा। लेकिन अगर खावंद ने पहले इकरार नहीं किया था कि हामिला है, या इस औरत का हमल जाहिर नहीं था, किसी को नहीं पता यह हामिला है, और खावंद ने तलाक दे दी है और फिर बाद में यह एक बच्चे को ले आई, तो अब सिर्फ एक दाई की गवाही से नसब साबित नहीं होगा, बल्कि मुस्तकिल दो मर्द गवाह लाने पड़ेंगे, या एक मर्द और दो औरतें गवाह लानी पड़ेंगी। जबकि साहिबैन फरमाते नहीं, तमाम सूरतों के अंदर एक दाई की गवाही भी काफी है। भाई बात समझ में आ गई? आप देखिए, कहते हैं वईदा वलदतिल मौतद्दतु वलदन, और जब मौतद्दा ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन यह कैद याद रखना, खावंद इनकार कर रहा है, मतन में यह कैद मजकूर नहीं, लेकिन इस कैद का आपने ख्याल रखना है। वईदा वलदतिल मौतद्दतु वलदन, और जब मौतद्दा ने एक बच्चे को जन्म दिया, और खावंद क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है। लम यसबुत नसबुहु इंदा अबी हनीफा रहमुल्ला, तो इसका नसब साबित नहीं होगा इमाम साहब के नजदीक, इल्ला अन यशहदा बि विलादतिहा रजुलानी औ रजुलुन वम्रातानी, मगर यह कि इस औरत की विलादत पर किसने बच्चे को जन्म दिया है उस पर दो आदमी गवाही दे दें, औ रजुलुन वम्रातानी, एक मर्द और दो औरतें, इल्ला अन यकूना हुन्ना कहबलुन जाहिरुन, मगर यह कि वहां हमल जाहिर हो। गई हमल क्या हो? जाहिर हो, फिर मुस्तकिल गवाही की जरूरत नहीं, फिर सिर्फ दाई की गवाही भी काफी है भाई। इल्ला अन यकूना हुनाका हबलुन जाहिरुन, मगर यह कि वहां पर हमल जाहिर हो, यानी सबको नजर आ रहा हो कि औरत हामिला है, अव एतराफ मिन क़िबलि ज़ौजी, या खावन की जानिब से एतराफ मौजूद हो, फयसबुतु नसबु मिन गैरि शहादतिन, तो फिर इस सूरत में नसब साबित हो जाएगा बगैर शहादत के। बात समझ में आ गई? तो फयस बुतुन नसबु मिन गैरी शहादतिन, तो इस सूरत में नसब साबित हो जाएगा बगैर शहादत के, यानी दो मर्दों की गवाही की जरूरत नहीं, या एक मर्द और दो औरतों की गवाही की जरूरत
नहीं, हां दाई की गवाही की जरूरत है क्योंकि खावंद इनकार कर रहा है। अगर खावंद इनकार न करे फिर तो दाई की गवाही की भी जरूरत नहीं है भाई।
وقال ابو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى يثبت في الجميع بشهاده امراه واحده। और साहिबैन फरमाते हैं कि इन तमाम सूरतों में नसब साबित हो जाएगा بشهاده امراه واحده, एक औरत की गवाही से। لان الفراش قائم بقيام العده, इसलिए क्योंकि फिराश कायम है عده के कायम होने की वजह से।
यह औरत عده गुजार रही है और عده के अंदर निकाह अभी पूरी तरह टूटा नहीं है, तो अभी भी यह औरत उस खावंद की फिराश है भाई। इद्दत के अंदर औरत बच्चे को जन्म दे तो वह बच्चा किसका शुमार होता है? खावंद का। मालूम हुआ अभी भी फिराश मौजूद है, यह औरत उसका फिराश है। अगर यह औरत उसका फिराश ना होती तो फिर बच्चे का नसब भी साबित ना होता। तो साहिबैन क्या फरमा रहे हैं कि यह बच्चा कौन लेकर आई है? मौतद्दा। और जब मौतद्दा है तो मालूम हुआ फिराश कायम है, और जब फिराश कायम है तो अहदीस में क्या आया? अलवलदु लिल फिराशी, आई अलवलदु लिसाहिबिल फिराशी, कि बच्चा साहिबे फिराश के लिए होता है। तो लिहाजा जब यह औरत फिराश है तो नसब तो साबित है, नसब साबित है। सिर्फ तायीन की जरूरत है कि इसी औरत ने बच्चे को जन्म दिया है या नहीं। खावंद इनकार कर रहा है कि इसने इस बच्चे को जन्म दिया ही नहीं, तो इस सूरत में अब सिर्फ एक तायीन की जरूरत है। सबूत नसब पहले से है, सबूत नसब पहले से है क्योंकि औरत इसका फिराश है, क्योंकि इद्दत के अंदर है। सिर्फ तायीन वलद की जरूरत है कि इसी औरत ने बच्चे को जन्म दिया है। कहते हैं लिअन अल फिराश कायमुम बिकियाम अल इद्दती, इसलिए क्योंकि फिराश मौजूद है इद्दत के पाए जाने की वजह से। वह हुवा मुलज़िमुन लिन्नसबी, और ये फिराश जो है ये लाजिम करने वाला है नसब को। जब फिराश हो तो नसब लाजिम हो जाता है, साबित हो जाता है। वल हाजतु इला तायीन वलदी अन्नहु मिन्हा, और हाजत इस वक्त सिर्फ इस बच्चे की तायीन की है कि अन्नहु मिन्हा, कि ये बच्चा इसी औरत से है, इसी ने इसको जन्म दिया है। फयतायनु बि शहादतिहा, तो ये उस एक औरत की गवाही से भी मुतायन हो जाएगा कि ये इसी औरत से बच्चा है। कमा फी हाल कियाम निकाही, जैसे कि निकाह की मौजूदगी की हालत में होता है। जैसे निकाह कायम हो तो उसके अंदर जैसे बच्चा पैदा होता है वो खुद बखुद उसी खावंद का शुमार होता है। तो यहां पर भी ये औरत इद्दत के अंदर है तो नसब खुद बखुद साबित हो जाएगा। सिर्फ तायीन वलद की जरूरत है कि ये इसी औरत ने इस बच्चे को जन्म दिया है, और उसके लिए एक औरत की गवाही भी काफी है। दलील समझ में आ गई जी। आगे देखिए वली अबी हनीफा रहमहुल्ला, और इमाम साहब की दलील यह है कि अनल इद्दत तनकजी बी करारिहा, कि इसकी इद्दत गुजर चुकी है। बी इकरारिहा बी वज़इल हमली, इस औरत का वज़ए हमल का इकरार करने की वजह से। यह औरत बच्चे को लाई है और यह क्या कह रही है? इस बच्चे को मैंने जन्म दिया है। तो हामिला की इद्दत क्या होती है? वज़ए हमल। तो जब इसने बच्चे को जन्म दे दिया तो इद्दत तो खत्म हो गई। जब इद्दत खत्म हो गई अब ये उस खावंद का फिराश न रही। जब ये फिराश इस वक्त नहीं है तो गुजरा हुआ फिराश वह हुज्जत नहीं हो सकता। फिराश मौजूद हो तब तो नसब साबित होता है, गुजरा हुआ फिराश तो उस हुज्जत नहीं है। दलील समझ में आ रही है? कहते हैं वली अबी हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम साहब की दलील यह है कि अनल इद्दत तनकजी बी इकरारिहा बी वज़इल हमली, कि इद्दत तो गुजर चुकी है इस औरत के वज़ए हमल का इकरार करने की वजह से। वल मुनकजी लैस बी हुज्जतिन, और वो फिराश जो गुजर चुका हो वो हुज्जत नहीं होता। जो फिराश मौजूद है उसकी वजह से तो नसब साबित होता है, जो फिराश गुजर चुका है उसकी वजह से नसब साबित नहीं होता। फमस्सतिल हाजतु इला इस बात इन नसब इब्तिदाअन, तो हाजत पेश आ गई इला इस बात इन नसब, नसब के साबित करने की। इब्तिदाअन शुरू से ही, जब फिराश गुजर चुका है और खावंद इनकार कर रहा है, तवज्जो है, खावंद इनकार कर रहा है, फिराश गुजर चुका है, तो आप एक मुस्तकिल दलील चाहिए जिसके जरिए नसब साबित हो सके। अब गुजरे हुए फिराश के जरिए नसब साबित नहीं हो सकता। दलील समझ में आ गई? तो कहते हैं वली अबी हनीफा रहमहुल्ला, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्ला की दलील यह है कि अन्नल इद्दत तनकजी बिकरारिहा बिवज़इल हमली, के उसकी इद्दत गुजर गई है वज़ए हमल का इकरार करने की वजह से। वल मुनकजी लैसा बिहुज्जतिन, और वो फिराश जो गुजर चुका है वो हुज्जत नहीं हो सकता। फमस्सतिल हाजतु इला इस्बातिन नसब इब्तिदाअन, तो हाजत पेश आ गई नसब को साबित करने की इब्तिदाअन शुरू से ही, यानी एक मुस्तकिल दलील की जरूरत पेश आ गई। फयुश्तरतु कमालुल हुज्जति, तो कमाल हुज्जत शर्त होगी, यानी हुज्जत का कामिल होना शर्त होगा। भाई कामिल हुज्जत चाहिए, यानी दो मर्दों की गवाही या एक मर्द और दो औरतों की गवाही। भाई यहां सवाल पैदा होता है कि भाई औरत के बच्चे को जन्म देने का मामला है तो यहां मर्द कैसे गवाह बन सकते हैं? तो जवाब याद रखना कि नहीं, इसकी भी इहतमाल है। मसलन एक औरत एक कमरे के अंदर गई है भाई, और मर्द वहां पर मौजूद हैं और उनको पता है कि इसके कमरे के अंदर और कोई भी नहीं है। फिर एक औरत गई और फिर उसने वहां एक बच्चे को जन्म दिया और मर्दों ने उस औरत को बच्चा लेकर वहां से निकलते जाते हुए देखा, या अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, तो यह भी काफी है, इससे पता चल गया कि इसी औरत ने बच्चे को जन्म दिया है। तो कहते हैं फयुश्तरतु कमालुल हुज्जति, तो हुज्जत के कामिल होने की शर्त होगी। बिखिलाफ मा इदा काना ज़हरल हबलु, बिखिलाफ उस सूरत के जब हमल जाहिर हो, औ सदर अल इतराफ मिन अज़्ज़ौजी, या खावंद की तरफ से एतराफ पेश आ चुका है। लिअन्ना नसब साबितुन क़ब्ल अल विलादति, क्योंकि इस सूरत के अंदर तो नसब साबित है वलादत से पहले ही। व तायुनु यसबुतु बि शहादतिहा, और वलादत की तायीन जो है वो उस औरत की गवाही से साबित हो जाएगी, क्योंकि खावंद इनकार कर रहा है। भाई आगे देखिए, फइन कानत मुअतद्दतन अन वफातिन फसद्दक़हल वरसतु फिल वलादा। भाई देखिए, साहिब हिदाया ने आपको बतलाया पीछे कि अगर एक औरत के खावंद का इंतकाल हो जाए और वो दो साल से पहले एक बच्चे को जन्म दे दे, तो इस सूरत में यह बच्चा उसी खावंद का शुमार होगा और नसब साबित हो जाएगा। अब आगे मसला जिक्र फरमा रहे हैं कि अगर ये औरत जो जिसके खावंद का इंतकाल हो गया है और इद्दत गुजार रही है, और फिर उसके बाद ये एक बच्चे को लेकर आई, अब ये पता नहीं कि खावंद की वफात को कितना वक्त गुजर चुका है, दो साल से कम है या दो साल है या दो साल से ज्यादा, तो अब इस सूरत के अंदर अगर वारिस इकरार करते हैं तो इस सूरत में नसब साबित हो जाएगा। अगर मुद्दत का पता है तो दो साल से पहले अगर बच्चे को जन्म दिया तो नसब साबित हो जाएगा, और अगर मुद्दत का इलम नहीं है कि दो साल गुजरे हैं या कम गुजरे हैं या ज्यादा गुजरे हैं, तो फिर इस सूरत के अंदर वारिसों के इकरार से भी नसब साबित हो जाएगा। भाई तो कहते हैं फइन कानत मुअतद्दतन अन वफातिन, और अगर ये औरत जो है ये इद्दत गुजार रही है अन वफातिन वफात से, फसद्दक़हल वरसतु फिल विलादति, तो इसकी तस्दीक कर दी वारिसों ने बच्चे की पैदाइश में कि इसने बच्चे को जन्म दिया है। वलम यशहद अलल विलादति अहदुन, और किसने विलादत पर गवाही नहीं दी, वारिसों ने इकरार तो कर लिया गवाही नहीं दी। फहुवा इब्नुहु फी कौलिहिम जमीआ, तो ये बच्चा जो है उसी मरने वाले का बेटा होगा हमारे तमाम अइमा के कौल में। वहादा फी हक़िल इर्से जाहिरुन, और ये वारिस होने के हक में तो जाहिर है। लिअन्नहु खालिसु हक़िहिम, इसलिए क्योंकि खालिस इन वारिसों का हक है। फयुक़बलु फीही तस्दीक़ुहुम, लिहाजा इसके अंदर इनकी तस्दीक कबूल की जाएगी। भाई देखिए, यहां दो सूरतें हैं, या तो तमाम वारिस जो हैं, या तो तमाम वारिस इकरार कर लेते हैं कि इस औरत ने इस बच्चे को जन्म दिया है तो नसब साबित हो जाएगा और सबके नजदीक ये उस मरने वाले का बेटा शुमार होगा और इस बच्चे को इसका पूरा हिस्सा मिलेगा। और एक सूरत यह है कि कुछ वारिस इकरार कर लेते हैं कि इसको इस औरत ने जन्म दिया है, ये उस मरने वाले का बेटा है, तो कुछ वारिस इकरार कर लेते हैं, तो फिर इस सूरत में क्या बाकियों के हक में भी इस बच्चे को उसी शख्स का बेटा शुमार किया जाएगा या नहीं, तो उसकी आगे तफसील साहिबे हिदाया बयान फरमाएंगे कि अगर ये जो वारिस जिन्होंने इकरार किया है इसकी पैदाइश का, ये वारिस जिन्होंने इसकी पैदाइश का इकरार किया है कि इसी औरत ने इसको जन्म दिया है, अगर ये दो आदिल मर्द हैं या एक आदिल मर्द और दो आदिल औरतें हैं, यानी गवाही का निसाब यहां पर पूरा हो रहा है, तो फिर गैरों के हक में भी इसका बेटा होना साबित हो जाएगा। गैरों के हक में भी, भाई कुछ वारिस तो इकरार कर रहे हैं कुछ इनकार कर रहे हैं, तो अगर इकरार वाले उनसे गवाही का निसाब पूरा हो रहा है तो फिर इस सूरत में गैरों के हक में भी यह बेटा शुमार होगा और इसको पूरा हिस्सा मिलेगा बेटे का। लेकिन अगर जिन्होंने इकरार किया है उनसे निसाब पूरा नहीं, सिर्फ दो औरतों ने इकरार किया है या सिर्फ एक मर्द ने इकरार किया या सिर्फ एक मर्द और एक औरत ने इकरार किया है, तो फिर इस सूरत में याद रखो इनके हक में तो यह उस मरने वाले का बेटा है, लिहाजा इनके हिस्से में से माल लेकर बच्चे को दिलाया जाएगा, लेकिन बाकी तो इनकार कर रहे हैं लिहाजा उनके हिस्से में कमी नहीं की जाएगी। भाई तवज्जो है। और अगर इकरार करने वालों का निसाब पूरा है कि इकरार करने वाले दो मर्द वारिस हैं और वह काबिल एतमाद हैं, या एक मर्द और दो औरतें हैं और वह सब काबिल एतमाद हैं, तो इस सूरत में फिर सब के हक में इस बच्चे का नसब मैयत से साबित हो जाएगा भाई, और फिर पूरा पूरा हिस्सा दिया जाएगा इस बच्चे को, सबके हिस्सों में उसी के बकदर कमी आ जाएगी। तो कहते हैं वहादा फी हकिल इर्स जाहिर, और ये बेटा होने का जो सबूत है ये वारिस होने के हक में तो जाहिर है कि ये बेटा वारिस होगा, ले अन्नहु खालिस हकिहिम, इसलिए क्योंकि ये खालिस उन वारिसों का हक है। भाई वरासत में माल मिल रहा है ना, तो ये माल तो खालिस इन लोगों का हक है, तो ये अपने हक के अंदर गोया उस बच्चे को भी शरीक कर रहे हैं। जब ये कह रहे हैं ये उसी मरने वाले का बेटा है, तो मालूम हुआ ये इस माल के अंदर इस बच्चे को भी शरीक कर रहे हैं, तो ये इनका अपना हक है, ये उसको शरीक कर सकते हैं। भाई ये माना है वहादा फी हकिल इर्से जाहिरुन, और ये बात वारिस होने के हक में तो जाहिर है, लियान्नहु खालिसु हकिहिम, इसलिए क्योंकि वारिस होना ये तो खालिस इन लोगों का हक है, फयुक्बलु फीही तस्दीकुहुम, लिहाजा इसके अंदर इनकी तस्दीक कबूल की जाएगी। अम्मा फी हकिन नसबी हल यसबुतु फी हकि गैरिहिम, बाकी नसब के हक में कि क्या वो नसब साबित हो जाएगा इनके अलावा के हक में भी, ये कुछ वारिस तो इकरार कर रहे हैं और कुछ तो इनकार कर रहे हैं, तो क्या गैरों के हक में भी ये नसब साबित हो जाएगा, क्या उनके हिस्से में से भी माल लेकर बच्चे को दिलाया जाएगा? मैंने बतला दिया कि अगर गवाही का निसाब पूरा है तो फिर सबके हक में नसब साबित हो जाएगा और फिर बच्चे को पूरा हिस्सा मिलेगा, और अगर गवाही का निसाब पूरा नहीं तो सिर्फ जो इकरार करने वाले हैं उनके हिस्सों में कमी आ जाएगी, उनके हिस्सों में से जितना बच्चे का हिस्सा बनता है वो बच्चे को दिला दिया जाएगा और बाकियों के हिस्सों में कोई कमी नहीं की जाएगी। भाई तो कहते हैं अम माफी हक नसबी, और बाकी बच्चे के नसब के हक में हल यसबुतु फी हक गैरिहिम, तो क्या वो इन तस्दीक करने वालों के अलावा के हक में भी नसब साबित हो गया नहीं? तो कालू फुकहा फरमाते हैं इदा कानू मिन अहली शहादती, कि जब ये इकरार करने वाले अहले शहादत हों, क्या हों? अहले शहादत हों, यानी गवाही का निसाब पूरा हो, यसबुतु, तो गैरों के हक के अंदर भी नसब साबित हो जाएगा, लिकियामिल हुज्जती, क्योंकि हुज्जत कायम हो गई, हुज्जत कायम हो गई, गवाही कायम हो गई, वलिहादा कीला, और इसी वजह से कहा गया है तुश्तरतु लफ्जतु शहादती, के लफ्ज शहादत शर्त होगा, लफ्ज शहादत शर्त होगा, यानी ये जो वारिस इकरार कर रहे हैं ये बाकायदा शहादत के लफ्ज को जिक्र करेंगे कि हम गवाही देते हैं इस औरत ने इस बच्चे को जन्म दिया है। भाई तो कहते हैं वलिहादा कीला, और इसीलिए कहा गया है कि तुश्तरतु लफ्जतु शहादती, के शहादत का लफ्ज शर्त होगा, वकील ला तुश्तरतु, और कहा गया है कि गवाही का लफ्ज शर्त नहीं होगा। भाई देखो ये हुज्जत कायम हो रही है उन वारिसों के खिलाफ जो मुनकिर हैं, लिहाजा जब ये हुज्जत कायम हो रही है तो बास फुकहा फरमाते हैं इसमें शहादत का लफ्ज जरूरी है, और बास फरमाते हैं नहीं, शहादत का लफ्ज जरूरी नहीं। वजह यह कि यहां पर यह शहादत बन रही है गैरों के हक में, यानी वो जो इनकार कर रहे हैं उनके हक में यह शहादत तबअन बन रही है, उनके हक में यह शहादत तबअन बन रही है। असल में तो जिन्होंने इकरार किया है उन्होंने अपने हक में इकरार किया है, किसमें? अपने हक में उन्होंने इकरार किया है, गैरों के हक में तो इकरार नहीं किया है। इकरार में तो सिर्फ आदमी खुद माखूज होता है, किसी एक आदमी के इकरार की वजह से गैर का मुआखजा नहीं हो सकता, तो वो तो सिर्फ अपने हक में इकरार कर रहे हैं, अपने हक में इकरार कर लिया कि ये उसी मरने वाले का बेटा है, तो इनके हक में तो बच्चे का नसब साबित हो जाएगा मरने वाले से, और गैरों के हक में तबअन साबित होगा। तो कहते हैं वकील अला तुश्तरतु, और कहा गया है कि शहादत का लफ्ज शर्त नहीं होगा, लिअन्न सुबूत फी हक गैरिहिम, इसलिए क्योंकि नसब का साबित होना गैरों के हक में, यानी वो जो इनकार करने वाले हैं उनके हक में नसब का साबित होना, तबाउन वो ताबे है, तबाउन ये बा पर फतहा पड़े भाई, تابعون غیروں کے حق میں اس نسب کا ثبوت تابع ہے لثبوت فی حقہم باقرارہم ان کے اپنے حق میں اس ثبوت کے باقرارہم ان کے اقرار کی وجہ سے بھائی کچھ وارث جنہوں نے اقرار کیا ہے تو ان کے حق میں تو وہ بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا مرنے والے سے تو ان کے حق میں بچے کا نسب ثابت ہو رہا ہے اصالتاً اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے حق میں طبعاً بچے کا نسب ثابت ہوگا جب دوسروں کے حق میں طبعاً نسب ثابت ہو رہا ہے لہذا اس میں اب شرائط کی رعایت ضروری نہیں بھائی ایک ہے چیز کا اصالتاً ثابت کرنا ایک ہے چیز کا اصالتاً ثابت کرنا اس میں شرائط کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور جب ایک چیز طبعاً ثابت ہو رہی ہو تو وہاں شرائط کا لحاظ ضروری نہیں تو یہ جو کچھ وارثوں نے اقرار کر لیا کہ یہ مرنے والے ہی کا بیٹا ہے تو ان کے اپنے حق میں تو نسب ثابت ہو رہا ہے اصالتاً لیکن غیروں کے حق میں نسب ثابت ہو رہا ہے طبعاً لہذا اس کے اندر شہادت کی شرائط نہیں ہوں گی یعنی شہادت کا لفظ ذکر کرنا ضروری نہیں ہوگا بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وکیل لا تشترطوا اور کہا گیا ہے شہادت کے لفظ کی شرط نہیں ہوگی لأن ثبوت فی حق غیرہم اس لیے کیونکہ باقیوں کے حق میں نسب کا ثابت ہونا تابع یہ تابع ہے لثبوت فی حقہم ان کے اپنے حق میں نسب کے ثبوت کے بھی اقرارہم ان کے اقرار کی وجہ سے وما ثبت تابعا اور وہ چیز جو تابعا ثابت ہو لا یراعا فیہ الشرائط اس کے اندر شرائط کی رعایت نہیں رکھی جاتی بات سمجھ میں آ گئی حاصل کلام یہ کہ اگر عورت کے خاوند کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے آپ کو پیچھے بتلایا تھا کہ 2 سال سے پہلے پہلے یہ بچے کو جنم دے دے تو نسب ثابت ہو جائے گا لیکن اگر ایک عورت ہے اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور مدت کا علم نہیں ہے کہ 2 سال پورے ہوئے ہیں یا کم ہیں یا زیادہ ہیں البتہ ورثہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ اسی عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی نسب ثابت ہو جائے گا بھائی البتہ اگر سارے ورثا اقرار نہیں کرتے کچھ اقرار کر رہے ہیں اور کچھ اقرار نہیں کر رہے وہ انکار کر رہے ہیں تو پھر جو اقرار کر رہے ہیں ان کو دیکھا جائے گا کیا ان کے ذریعے گواہی کا نصاب پورا ہو رہا ہے یا نہیں یعنی اقرار کرنے والے 2 عادل آدمی ہیں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہیں تو اگر یہ گواہی کا نصاب پورا ہے تو پھر باقیوں کے حق میں بھی اس کا نسب ثابت ہو جائے گا لہذا اس بچے کو اس کا وراثت میں سے پورا حصہ ملے گا اور سب کے حصوں میں اسی کے مطابق کمی ہو جائے گی اور اگر گواہی کا نصاب پورا نہیں ہے یعنی صرف 1 مرد ہے یا صرف 2 عورتیں ہیں یا 1 مرد اور 1 عورت ہے انہوں نے اقرار کیا ہے کہ اسی عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہے اور باقی وارث اقرار نہیں کر رہے تو پھر صرف ان کے حصے میں کمی آئے گی ان کے حصے میں سے جتنا بچے کا حصہ بنتا ہے وہ دے دیا جائے گا اور باقی جو انکار کرنے والے ہیں ان کے حق میں بچے کا نسب ثابت نہیں لہذا ان کے حصوں میں سے ان کے حصوں میں کمی بھی نہیں کی جائے گی بھائی چنانچہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کے ذریعے شہادت کا نصاب پورا ہو رہا ہے اور منکرین کے حق کے اندر بھی اس کا نسب ثابت ہو رہا ہے لہذا ان کے اقرار میں شہادت کا لفظ ضروری ہے کہ یوں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہے لیکن دیگر فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں شہادت کے لفظ کی شرط نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ اس بچے کا نسب ان کے اپنے حق میں تو اصالتاً ثابت ہے اور غیروں کے حق میں طبعاً ثابت ہے اور جب کوئی چیز طبعاً ثابت ہو تو وہاں پھر شرائط کی رعایت رکھنا ضروری نہیں ہے بھائی بات سمجھ میں آ گئی چلیے بس بھائی ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام